چلیں گے. الحمدللہ یہ سورت یہاں پہ مکمل ہوتی ہے. دیکھتے ہیں اس کی تفسیر کہ آج اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں. بہت اہم بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخری رکوع میں ہمیں انسٹرکشنز دی ہیں. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں آیت نمبر 63 سے. آواز صحیح میرا خیال آ رہی ہوگی سب کو. بسم اللہ الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 63 سورۃ الحج 17 پارہ. علم کیا نہیں ترا, تم نے دیکھا. کیا کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں ہمیں؟ دیکھنے سے مطلب ہوتا ہے کہ کوئی غور کرو. دیکھتا تو جانور بھی ہے, اب بلی کتا بھی دیکھ رہے ہیں. ہمارے دیکھنے میں اور اس کے دیکھنے میں فرق ہونا چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کیا تم نے نہیں دیکھا, یعنی کہ تم نے نگاہ عبرت سے, سبق لینے والی نظر سے نہیں دیکھا. کس چیز کو؟ یا اللہ, کہ ان اللہ انزل من السماء ماء, کہ بے شک اللہ ہی ہے جو نازل کرتا ہے آسمان سے پانی کو. اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے آسمان سے پانی, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے جو بارش ہے. اور جو اس کے ذریعے زمین کے اوپر گرینری اور سارے ماحول میں جو ایک چینج آ جاتی ہے, وہ اس بارش کی وجہ سے ہوتی ہے. جو خزاں سے بہار آتی ہے وہ بھی اس بارش کی وجہ سے ہوتی ہے. کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کا ذکر فرما رہے ہیں. اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیسے دیکھو وہ دن کو رات میں, رات کو دن میں بدلتا ہے, اور پھر دیکھو کیسے وہ آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے. فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً, اور پھر ہو جاتی ہے زمین اس کی وجہ سے خوب سرسبز, زمین میں ہریالی پیدا ہو جاتی ہے. کیا تم ان باتوں پہ غور نہیں کرتے کہ کون یہ کر رہا ہے, کہاں سے اللہ تعالیٰ؟ اب تو سبحان اللہ, پہلے تو زمانے میں لوگ بڑا سوچتے تھے بارش کیسے ہوتی, اس کا کیا طریقہ, کیا سلسلہ ہے. اب جب کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی تو اتنا ہمارا ایمان بڑھنا چاہیے تھا کہ ہم یہ دیکھتے کہ اب تو اور زیادہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیسے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہوائیں بھیجتا ہے جس کو واٹر سائیکل کہتے ہیں, پھر کیسے سمندروں سے پانی اٹھتا ہے بھاپ بن کے, اور کس طرح سے وہ منو ٹنو پانی جو ہے نا اوپر آسمان پہ چلا جاتا ہے اور پھر بادلوں کی صورت میں آگے چل پڑتا ہے, اور جدھر اللہ کا حکم ہوتا ہے ادھر برستی ہے, اور پھر ڈول کی طرح پانی نہیں سارا گر جاتا, قطرہ قطرہ کر کے برستی ہے تاکہ اس سے ہریالی اگ سکے. کیا تم یہ سوچتے ہو کہ یہ سارا سسٹم کسی کی طاقت کے بغیر یا کسی کی پلاننگ کے بغیر یا بس ایسے ہی ہو گیا؟ کیا اس کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ کوئی ہوگا نا خبر گیری کرنے والا, کوئی ہوگا پلاننگ کرنے والا, کوئی ہوگا فیصلہ کرنے والا جس کی وجہ سے یہ ہوا, تو وہ کون ہے؟ کیا تم یہ نہیں سوچتے؟ اور امیزنگلی یہ جو اس کی اسٹیٹسٹکس ہیں بتاتی ہیں کہ 1 سیکنڈ میں, 1 سیکنڈ میں 16 ملین ٹنز پانی اوپر جاتا ہے آسمان میں. 16 ملین پانی جو ہے نا, 16 ملین ٹن پانی جو ہے وہ سمندر سے اٹھتا ہے ویپرز کی صورت میں اور اوپر جاتا ہے, اور اتنی مقدار 1 سیکنڈ میں زمین پہ برسنے والا پانی ہوتا ہے. یعنی بیلنس کتنا ہے سبحان اللہ, یعنی جتنا اٹھ کے جا رہا ہے اتنا ہی زمین پہ واپس آ رہا ہے, کہیں کوئی بھی ڈنڈی نہیں مار رہا سبحان اللہ. اور دیکھو کیسے پھر اس سے اتنا بڑا چینج اس زمین کے اوپر آتا ہے کہ ہریالی اگاتی ہے. اگر آپ تھوڑا سا اس بات کو ایک اور طرح سے, ایک اور سے اینگل سے سوچیں کہ یہ جو پودے ہیں, یہ جو کتنے جنگلات ہیں, یہ کتنی آپ گرینری دیکھتے ہیں پہاڑوں پہ, اس پہ کبھی ذہن میں آتا ہے آپ کو کہ کون ان کو پانی دیتا ہے, کون ان کو ان کی جو ساری نرشمنٹ ہے وہ ساری ان کو پوری کرتا ہے, اس کی نیڈس؟ یہ خود تو چل کے نہیں جا سکتے کہ اپنا پانی لے کر آئیں, ہے نا, خود کو پانی پینے کے لیے کہیں چلا کے لے جائیں. اللہ تعالیٰ ان کا کیسے انتظام فرماتا ہے کہ پانی ان تک لے آتا ہے, اور کتنا بڑا سسٹم ہے جو اس کے اندر کام کر رہا ہے کہ ان, چاہے جنگلات ہیں, چاہے حیوانات ہیں, چاہے چھوٹے چھوٹے پودے ہیں, ان تک پانی ان کے گھر میں آ کے اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے. रिस्क वहाँ पहुँचा दे जाता है जहाँ पे ये हैं। हम कितने मायूस हो जाते हैं बाज़ दफ़ा रिस्क रोज़ी के मामले में कि अब देखो ऐसे हो गया और मेरे रिस्क के मसले, और ये सुभान अल्लाह, अल्लाह तो वो ज़ात है कैसे उन पौधों तक भी पानी ला के पहुँचा रहा है, तुम्हें ना रिस्क देगा। और कैसे खामोशी से सब कुछ रब का हुक्म मानते हुए और काम किए जा रहे हैं, ना समुंदर कह रहा है मैंने नहीं अपना पानी देना, ना वो कह रहे हैं बादल के हमने नहीं चल के जाना, ना हवाएं कहती हैं हमने नहीं उड़ाना इनको, ना कुछ, हर चीज़ खामोश फरमा बरदार है। और हमारे लिए भी एक पैगाम है कि सारा जहान कैसे अल्लाह की फरमा बरदारी कर रहा है, कितना बड़ा सबक है कायनात में अगर हम गौर करें। और इसी तरह ये देखें कि बंजर ज़मीन में भी अल्लाह ताला सब्ज़ा उगा देता है जब पानी उसमें गिरता है, तो तुम भी सोचो कि तुम्हारी बंजर ज़िंदगी के अंदर भी अल्लाह ताला बहार ला सकता है। बहार लाना अल्लाह की कुदरत में है, तो फिर क्यों तुम मायूस होते हो, हालात एक जैसे नहीं रहते, और जब बदलते हैं तो पता भी नहीं चलता कि कभी यहाँ पे कभी कोई बंजर ज़मीन भी हुआ करती थी ना। जैसे एक जगह होती है बिल्कुल बैरन, उसके बाद वहाँ पे हरियाली होती है। तो हर तरह के हालात में इंसान अच्छी अल्लाह से उम्मीद रखे कि अल्लाह ताला अच्छा ही करेगा, और कभी मायूस ना हो क्योंकि उसी ज़मीन में अल्लाह सब्ज़ा उगा देगा। इन्ना लाहा लतीफ़ुन खबीर, बेशक अल्लाह ताला लुत्फ व करम करने वाला। सुभान अल्लाह, लतीफ़ जो लफ्ज़ है ना, ये इसमें इसके माने में क्या है कि जिसमें बड़ी मेहरबानी हो, उसकी बातचीत में भी, उसके किरदार में भी, हर लिहाज से जो नरम हो। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ऐसा है, ऐसा तुम पे लुत्फ व करम करने वाला है। और खबीर भी है, उसको सब पता है, उसको सब पता है इस पे क्या गुजर रही है, किसके क्या हालात हैं, किसके क्या मसले हैं। और ये वाटर साइकिल का पूरा जो प्रोसेस है सूरह रूम में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। जिस वक्त लोगों को कोई साइंस का नहीं पता था, उस वक्त सारा वाटर साइकिल बता दिया गया था कुरान में। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, उसी का तो है जो सब आसमानों में और ज़मीन में, सब उसी का है और सब उसी के फरमा बरदार हैं। अब क्या सबक मिल रहा है हमें, सब उसका, तो फिर मैं उसकी क्यों ना हो जाऊँ। वा इन्ना अल्लाह, और बेशक अल्लाह ताला लहू अल गनी अल हमीद, बेनियाज है, और ऐसा बेनियाज है, बेनियाज का मतलब क्या, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है कि उसकी बादशाहत के लिए, उसकी हुकूमत के लिए, उसके ये पूरे कारखाना कुदरत को चलाने के लिए ना फरिश्तों की ज़रूरत है। हम सोचते होंगे कि शायद फरिश्ते हैं जो काम करते हैं, तो फिर फरिश्ते ना हों तो फिर क्या हो, नहीं, और तो खैर कोई ऐसा वो है ही नहीं है कि जो कायनात की निज़ाम चलाने के अंदर कोई ना हम कर रहे हैं ना कोई जिन्नात कर रहे हैं, मगर हमें ये मालूमात होती हैं कि फरिश्ते निज़ाम चलाने के अंदर कभी इधर किसी काम पे मामूर है, कोई किधर किसी काम पे मामूर, लेकिन अल्लाह ताला किसी मोहताजी नहीं है, वो बेनियाज है और हमीद भी है, यानी कोई उसकी तारीफ करे या ना करे, वो आप अपनी ज़ात में महमूद है। उसको ये भी नहीं मोहताजी के अब कोई तारीफें करेंगे तो उसकी तारीफ बयान होगी, कोई भी ना तारीफ करे तो तब भी वो ज़ात ऐसी है कि काबिल तारीफ है, वो उसकी तारीफ ही तारीफ है। अलम तौरा, क्या तुमने नहीं देखा, अब एक और चीज़ की तरफ हमें बताया गया, अन अल्लाह सखरा लकुम, लकुम को ज़रा सर्कल कर लें, बेशक अल्लाह ताला ने मुसख़र कर दिया लिए तुम्हारे, मा फिल अर्द, जो भी ज़मीन में है वो तुम्हारे लिए मुसख़र कर दिया। मुसख़र करने का मतलब क्या होता है, यानी तुम्हारे फ़ायदे के लिए अल्लाह ताला ने उसको तुम्हारे हुक्म के अंडर कर दिया, तुम्हारे हाथ के अंडर कर दिया, तुम्हारे कंट्रोल में दे दिया, ठीक है। ये है सारा, यानी मुसखर करने का माना, वरना हम कई दफ़ा मुसखर लिख लेते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि ज़मीन में पहाड़ हैं, समुंदर हैं, चरिंद परिंद हैं, हज़ारों चीज़ें हैं, वो तो नहीं हमारे कंट्रोल में किसी तरह, तो फिर क्या मतलब है? मतलब ये है कि उनमें से भी कई चीज़ों को तो बिल्कुल डायरेक्ट कंट्रोल में किया हुआ है ना अल्लाह ताला ने, और जिनको आपको लगता है कि नहीं ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो चीज़ें भी मुसख़र करने का मतलब है कि आपकी खिदमत में लगा दी हैं, हर वक्त आपकी खिदमत कर रही हैं। ये है माना तस्खीर का, चाहे आपके हुक्म से, आप हुक्म नहीं देते पहाड़ों तुम ऐसे खड़े हो जाओ, समंदर तुम ऐसे चल पड़ो, आप नहीं हुक्म दे, लेकिन वो आपकी ही आपको सर्व कर रहे हैं, आपकी लिए सर्विस में है अल्लाह के हुक्म से। समझ आई? सुभान अल्लाह, ये कितनी बड़ी बात है कि फरमाया मा फिल अर्द, जो भी जमीन में है, जो भी जमीन में, वो किसी ना किसी तरह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, आप ही की खिदमत में लगा हुआ है। आप को सोचते हैं कि कोई एक चीज़ है, कोई ये इसकी क्या होती होगी, क्या फादियत होती होगी, ये कैसे हमारा फ़ायदा करते, वो आपका अगर डायरेक्टली नहीं कर रहे तो जो चीज़ आपके काम कर रही है वो उसका फ़ायदा कर रही है। मसलन है ग्रीनरी, कई घास है, हम कहें घास हमारा क्या फ़ायदा कर रही है, हम तो ना घास को खाते हैं ना कुछ है, वो घास को वो जानवर खाते हैं जिनको आप खा रहे हैं। तो देखो किस तरह हर चीज़, अब कितने जानवर हैं, कितने चरिंद परिंद हैं, कितने वो सब इंसानों की सर्विस में लगे हुए। कहीं अल्लाह ताला ने बीज को काम पे लगा दिया, कहीं हवाएं काम पे लगी हुई हैं, कहीं समंदर काम के पे लगे हुए। सारी कायनात तुम्हें बताती है कि वो रब कितना रऊफ और रहीम है कि जिसने हर चीज़ को तुम्हारे लिए काम में लगाया हुआ है। कितने ही जानवर हैं जो खा रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि तुम जब वो पल पड़ जाएं तो तुम उनको खा सको, ताकि वो तुम्हारी खुराक बन जाए। कितने ही बीज हैं जो ज़मीन के अंदर पड़े हुए हैं और वो बाहर निकलने को बेचैन है, ताकि जब वो पक जाएं तो तुम उनसे जो अनाज है वो खा सको। आप अंदाज़ा करें, इर्द गिर्द अपने नज़र दौड़ाएं, कितनी सारी चीज़ें, ये रब की रहमत नहीं है कि हवा है, पानी है, ग्रेविटी है, दरख्त हैं, जानवर हैं, सब इंसान के काम में लगाए हुए। और कहीं ऐसा भी है कि कई फूल हैं वो किस काम में लगाए हुए, ये हमारा क्या काम कर रहे हैं, ये तुम्हारी नज़र को लज्जत पहुंचाने के लिए अल्लाह ने तुम्हारे काम में लगा दी हैं कि तुम्हारी नज़रों की लज्जत इससे हासिल हो, तुम्हें मज़ा आए देख के, खूबसूरती भी तो इंसान को चाहिए होती ना। तो मसरूफ़ अमल है सारी कायनात, और किस ये कभी नहीं है किसी ने सोचा कि किसने काम में लगाया इनको, किसने ये इनको ये किया हुआ है कि ये पाबंद हो गए हैं ऐसे, ये नहीं सोचते। ये इस आयत के एंड में जो है ना रऊफ़ और रहीम, ये अल्लाह ताला ने अपने रऊफ़ और रहीम होने के दलायल दिए हैं इस आयत में। वो कैसे रऊफ़ और रहीम है, ये है उसकी राफत, ये बता रही है कि अल्लाह ताला कितना रहीम है तुम पे। और इसकी पहली दलील यही है कि देखो तो सही, देखो तो सही ज़मीन के ऊपर कैसे कैसे तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने सूटेबल हालात कर दिए। आज साइंस खुद बताती है कि किसी और प्लेनेट के ऊपर कोई ऐसे हालात नहीं है कि वहाँ पे सर्वाइवल हो सके इंसान का, ठीक है। फिर देखें इस ज़मीन में कितनी धातें हैं, कितनी मिनरल्स, ऑयल्स, गैसेस, सब कौन यूज़ कर रहा है, कौन सी बिल्ली, कौन सा शेर, कौन सा जिन, या कौन सी सांप, या कौन सा हिरन, कौन यूज़ कर रहे हैं उनको, हाँ हम यूज़ करते हैं ना इंसान, तो वो किसकी खिदमत में लगे हैं, हमारी। अल्लाहु अकबर। आप जब कुरान की आयतें पढ़ते हैं और ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं तो ये जो सर है ना ये झुकता ही चला जाता है कि रब तेरी मेहरबानियाँ कितनी हैं, कि और वो मेहरबानियाँ भी ऐसी कि खामोशी से इंसान को सर्व करती जा रही हैं। तो तुझे इंसान अल्लाह ने इतनी अकल दी है, जब तू इनको देखता है सोचता नहीं है, अलम तारा कभी नहीं सोचा, कभी नहीं देखा, रिसर्चेज हो रही हैं, लैब्स बनी हुई हैं, दिन रात काम हो रहे हैं, कभी किसी कीड़े पे, कभी किसी परिंदे पे, कभी किसी चीज के ऊपर, सोचते नहीं फिर कोई तो है जिसने इनको इस काम में लगा दिया, ये कैसे कैसे हमारे लिए काम कर रहे हैं। एक सूरज को ही देख लो, एक चक्कर में है, चक्कर में है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, दिन रात घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। किसके लिए घूम रहा है? इंसान के लिए, कि इंसान अंधेरे में रह रहा है, जैसे इसको रोशनी मिले। सब मसरूफे अमल है। वल फुल्क तजरी फिल बहरी बि अम्री ही, ये जो मुसख़र किया तुम्हारे लिए, और जो जो फुल्क है, जो कश्ती है, वो भी चलती है समंदर में, लेकिन किसके हुक्म से? हम फौरन कहेंगे वो जी लॉज हैं, ये लॉ है पानी का, ये है इस तरह से, फिर वल्लाहु आलम क्या क्या हमेशा पैसे चलता है, फिर पानी के अंदर ऐसे होता है, फिर ये होता है, कितने कितने हम लॉज बना देते हैं। लेकिन ये तो बताओ वो लॉज बनाने वाला कौन है, इस लॉ में इसको बांधने वाला कौन है, इस पानी को इस लॉ में बांधने वाला कौन है, इन सब को जो ये इस ज़मीन के ऊपर हमें सर्व कर रहे हैं, ये नहीं कभी सोचते। क्यों इंसान की अकल यहाँ आके गुम हो जाती है बिल्कुल। हम कितनी आराम से कह देते हैं ये फलानी चीज़ें शिप करा देते हैं, वो शिपमेंट यहाँ से वहाँ जा रही है, अब हम सोचते हैं हमारे पास पैसे हैं तो हम शिपमेंट करा देंगे। ये भी सोचो तुम्हारे पास कितना भी माल हो, लेकिन अगर पानी इन तुम्हारे जहाज़ों को अपने ऊपर चलने ही ना दे तो फिर क्या कर लोगे तुम? और पानी को कैसे पहचान हो जाती है कि जहाज़ को तो मैंने चलने देना, और इंसान जो जहाज़ से बहुत कम वेट रखता है उसको मैंने डबो देना अगर उसने पैर रखा मेरे अंदर। हाँ, वो क्यों कैसे जहाज़ों को इतने इतने मनोटनों वज़न लेके उनको अपने ऊपर चलने देता, और कैसे वो इतने बड़े बड़े जहाज़ समुद्रों की लहरों पर जैसे सवार हो गए और चल रहे हैं, उनके नीचे करोड़ों करोड़ों पानी के कतरे हैं जो ऐसे लगता है जुड़ गए हैं कि जहाज हमारे ऊपर स्मूदली चलता हुआ चला जाए, सेल करता हुआ चला जाए। कितने करोड़ों कतरे होंगे, और फिर जैसे जैसे जहाज आगे जाता जाता है वो फिर पीछे होते जाते हैं। जब जहाज जिसके ऊपर आता है वो ऐसे लगता है कतरों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए हैं जोर से, और हाथ पकड़ के खड़े हो गए ताकि एक फ्लैट सा जैसे फर्श है इस तरह बन जाए। फिर पिछले कतरे फारिग हो जाते हैं, अगले कतरे हाथ पकड़ लेते हैं। तो जरा इन कतरों की इज्तमाइयत को तो देखें, कितने आपस के अंदर जुड़े हुए हैं, जुड़ते हैं तो जहाज चल सकता है। हाँ, जुड़ते हैं तभी जहाज चलते हैं। तुम्हें जुड़ने का सबक इससे नहीं मिलता कि जुड़ोगे तो कोई काम हो सकेगा, और अगर जुड़ते नहीं हो तो कुछ नहीं। और ये किसके लिए जुड़ते हैं, किसके हुक्म से जुड़ते हैं? अल्लाह के, तो अल्लाह के लिए जुड़े ना। तो कभी सोचा भी करो कि ये इसको भला पानी को इतनी अकल है कि किसको चलने देना, किसको उछाल के फेंक देना, किसको गर्क कर देना, इसको इतनी अकल है? नहीं, इसका मतलब कोई और हस्ती है। और भी अमरी ही हमें बता देता है कि कोई शाही फरमान है, फिर पानी कैसे ना हाथ बांध के खड़ा हो जाए, और कैसे ना हुक्म बजा लाए। जब वो अल्लाह का अमर आ जाता है तो समंदर जिनको देख के हमें हैबत आती है, यकीन करें जब जो आप में से कभी शिप में गए होंगे बीच समुंदर के जाके देखें, जहाँ पे दूर दूर तक कोई खुश्की नहीं नजर आती, कितनी हैबत है। समंदर एक मैसिव बॉडी ऑफ वाटर है, ये कितनी हैबतनाक चीज़ है, और इसको कंट्रोल करने वाला रब, ये तो बड़े बड़े शिप्स को उठा के वो तिनकों की तरह उधर फेंक देता है जब अल्लाह का हुक्म आता है। इंसान क्या चीज़ है इसके सामने? इंसान फड़फड़ाते रहते हैं, वो तो बड़े बड़े शिप्स, बड़े बड़े जहाज इसने अपने अंदर अपने पेट में डाल लिए और पता भी नहीं चला कि कहाँ चले गए। लोग ढूंढते ही रह गए कि कहाँ चली गई मलेशियन एयरलाइन का जहाज। हाँ, पता भी नहीं चला। इतनी बड़ी चीज़ है समंदर, और अल्लाह ने कैसे तुम्हारे लिए, कश्तियाँ चलाने के लिए इसको आसान कर दिया। कई ज़मीन में ऐसे खत्ते हैं जहाँ पे आइलैंड जैसे हैं, वहाँ पे आप ये कश्तियों के बगैर तो पहुँच ही नहीं सकते। अगर जहाज़ ना चलने देता ये समंदर और डबो देता जहाज़ों को, तो कैसे पहुँचते वहाँ। और फिर देखो युमसी कुछ समा, और वो थामे हुए आसमान को, अंतका आलल अर्ध, कि वो गिर पड़े ज़मीन पर, यानी कि वो गिर ना जाए ज़मीन के ऊपर, उसने आसमान को ऐसे थामा। आसमान को थामने का मतलब क्या है? आज हमें साइंस से पता चलता है आसमान का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि कोई पता नहीं ऐसे करके एक चीज़ है। आसमान में इतने प्लैनेट्स हैं, इतने स्टार्स हैं, इतने मीटियोर्स हैं, इतना कुछ है जो यहाँ पे, यानी किस कौन सी स्पीड होगी, लाइट की स्पीड से, किस स्पीड से इतनी तेज़ इतने बड़े बड़े कुर्रे फिज़ा के अंदर घूम रहे हैं, घूम से ज़्यादा मैं कहूँगी उड़ रहे हैं, इतनी तेज़ उड़ रहे हैं। कोई आके ज़मीन पे भी तो गिर सकता है। एक दफ़ा बड़ा वो उसमें अखबारों में चर्चा आया था जी, एक टुकड़ा है वो जनाब, वो इतनी तेज़ी से ज़मीन की तरफ आ रहा है और फलाना वक्त में हो सकता है वो आके टकरा जाए, अगर वो टकरा गया तो फिर ये हो जाएगा, फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। तो कौन बचाता है? कितने टुकड़े दौड़ते हुए भाग रहे हैं, उड़ रहे हैं फिज़ा के अंदर, उनको यहाँ पर गिरने से कौन बचाता है कि वो गिर ना जाए? कभी सोचा आपने? खौफ आता है देख के, जब आप ऐसी कोई भी वो दिखाते हैं ऐसी फिल्में के जिनके अंदर पूरी ये स्पेस दिखाते हैं, क्या है ऊपर, क्या क्या घूम रहा है, इंसान को खौफ आता है कि इनमें से कोई चीज़ भी ज़मीन पे अगर गिर गई, और सदियों 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 पहले ऐसे हुआ था, जैसे डायनासोर ख़त्म हुए थे ज़मीन के ऊपर एक ऐसा चीज़ गिरी थी कि जैसे बिल्कुल मट्टी मट्टी हो गया, जाहिर है जो चीज़ बहुत ज़ोर से गिरेगी तो मट्टी हो जाएगी फिज़ा में, हर चीज़ ख़त्म हो गई थी। तो अल्लाह ताला चाहे तो दोबारा ऐसा हो सकता, लेकिन किसने बचाया हुआ तुम सोचते नहीं हो। लेकिन हाँ फरमाया वो थामे हुए आसमान को कि वो गिर पड़े ज़मीन पे, इल्ला भी इतनी मगर उसके इज़्ज़न से। ये सब उस वक़्त तक ऐसे तुम्हें जो साउंड एंड बड़ा अच्छा काम नज़र आ रहा है, ये उस वक़्त तक है जब तक उसका इज़्ज़न है। जब उसका इज़न नहीं होगा, उसकी तरफ से कौन आएगा, तो इज़ा समा उन शक्कत, और फिर वह इज़ा समा उन फतरत, आसमान देखना कैसे फट जाता है। वैदल कवा की बनता फरत, देखो फिर सितारे कैसे टूट टूट के गिरेंगे, कैसे बिखर जाएंगे। ये हमेशा के लिए नहीं है, एक दिन होगा कि वहाँ पे बहुत हलचल होगी। देखिए अब हमें कभी ये तो खौफ आ सकता है कि कोई हरिकेन ना आ जाए, ज़मीन पे जलजला ना आ जाए, इस तरह के तो हमें खौफ आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें कभी ये खौफ नहीं आता कि आसमान ज़मीन पे गिर पड़ेगा, हाँ ये सारा का सारा गिर गया तो क्या होगा। कितनी हम सुकून से रह रहे हैं ना, तो ये इसलिए कि अल्लाह ताला ने इसको थामा हुआ है, यानी अल्लाह का हुक्म है, तो हम यहाँ पर आराम से रह रहे हैं बेखौफ कतर। इन्ना अल्लाह बिन्नासी लरऊफुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला लोगों के साथ बहुत शफकत करने वाला है, बहुत मेहरबान है। इस सब के बाद तुम्हें ये नहीं पता चलता कि वो रब कितना शफकत वाला है, कितना मेहरबानी वाला है। और बिन्नास को देखें आप, बिन्नास में कौन है? यहाँ पे ये नहीं फरमाया इन्नल्लाह बिलमुमिनीना, मोमिनों के साथ बड़ी शफकत वाला है, अल्लाह ताला ने फरमाया इंसानों के साथ, सारे इंसानों के ऊपर कितना मेहरबान है उसकी शफकत, उसकी मेहरबानी मुसलमान के लिए भी है, काफिर के लिए भी है, गुनाहगार के लिए भी, फरमा बरदार के लिए भी, जो उसको मानता है उसके लिए भी, जो उसको नहीं मानता उसके लिए भी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह लोगों के साथ कितना शफकत वाला है, कितना मेहरबानी वाला है। इसके बाद तो इंसान का किसका नहीं दिल करेगा कि वो उस रब के आगे अपना सर झुका दे। देखो उसकी मेहरबानियाँ आप देखें, इंसानों में ही देख लें, हमारे साथ कोई बुरा करे, सरा देर कोई बुरा करे तो हम कहते हैं कि इसने मेरे साथ एक किया तो मैं इसके साथ 10 करूँगा, और वो इंतकाम की आग जो होती ना बुझती ही नहीं है। फलाने वक्त में इसने मेरे साथ, 100-100 साल पुरानी बातें भी हम याद कर करके और फिर उड़ते रहते हैं कि ये हुआ था ये। और देखो इंसानियत अल्लाह के साथ क्या करे कि उसका इनकार करती, वो फिर भी रऊफुर रहीम है, कितना उसका हिल्म है, कितना उसका सब्र है। اس کے بعد نہیں اللہ کے اوپر پیار آتا کہ اللہ تو کتنا محبت کرنے والا ہے، واقعی تو شفقت کرنے والا، اور اس نے اپنی شفقت کی وجہ سے، اپنی محبت کی وجہ سے سب کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، احیاکم، جس نے تمہیں زندگی دی. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی، باقی سب چیزیں کو بھی تم بھول جاؤ تو تب بھی اپنے آپ کو تو دیکھو، تمہیں زندگی کس نے دی؟ اگر آج ہم نے سورج دیکھنا، چاند دیکھنا، یہ کشتیاں یا یہ اور بارش یا یہ سب، تبھی دیکھیں گے نا ہم زندہ ہوں گے تو، ہمارا کچھ وجود ہوگا تو. بتائیں کہ 1900 میں آپ سب کہاں تھے، کدھر تھے 1900 میں، 1800 میں کہاں تھے، 1400 میں کہاں تھے؟ کہیں بھی نہیں وجود تھا، کوئی نام و نشان نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھے، کوئی پتہ نہیں تھا کس نے آنا ہے، کیا تھے؟ آج تو بڑی پھوں پھاں ہیں انسانوں کی کہ ہمیں بڑی چیز بن گئے، ہم یہ ہیں، اور تم تھے کیا پہلے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ نے تمہیں وجود دے دیا تو اب اللہ کو آنکھیں دکھاتے ہو، اللہ کو للکارنے لگے کہ اس نے پیدا جو کر دیا تمہیں، یہ اس کا قصور ہے کہ اس نے مجھے پیدا کر دیا، اس لیے میں آج کھڑی ہو کے باتیں کرتی ہوں. ہم نہیں مانتے، ہم نہیں یہ کرتے، یہ کیوں ہو گیا، وہ اللہ نے کیوں ظلم کر دیا، یہ کیا فیصلہ اس کا ہے. اس کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا، اور اس کے لیے ان باتوں کے لیے اس نے یہ سارا کارخانہ قدرت تمہارے لیے چلا دیا. کتنا شفیق اور مہربان ہے، اس نے تمہیں زندگی دے دی. صرف ایک اس احسان کو انسان لے کے بیٹھ جائے نا تو وہ کبھی سر اٹھا نہیں سکتا سجدے سے کہ اللہ تو نے مجھے زندگی، یہ تو زندگی دی بھی تیری ہے، اور اگر میں اس زندگی کو قربان بھی کر دوں تیرے لیے تب بھی نہیں حق ادا ہوتا. یہ جان دی ہوئی، کیا ہے وہ شعر، یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، سم تھنگ لائک دیٹ، کہ یہ زندگی اسی کی دی ہوئی، اگر اس کے راستے میں لگا بھی دی تو کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بڑا کارنامہ نہیں کر دیا. تو یہ، لیکن ہم پھر بھی اسی کی دیوی زندگی کو کہتے ہیں نہیں، اس کو بچا بچا کے رکھیں، کیونکہ وہ یہ تو نہیں ہم دے سکتے اس کے لیے، یہ دو گھنٹے بھی اس کے لیے دے دیں اس زندگی کے، یہ تو ہمارے دو گھنٹے ہیں، یہ تو تین گھنٹے میرے ہیں، یہ تو زندگی میری ہے، میں اپنی مرضی سے گزاروں گی. کون ہوتا ہے کوئی مجھے کچھ کہنے والا؟ تم اپنی مرضی سے نہیں اس دنیا میں آئے، نہ تم نے خود کو پیدا کیا، خود کو خود پیدا کیا ہوتا تو پھر جو مرضیاں کرتے. ہو الذی، اس نے احیاکم، تم کو زندگی دی. یا تو اس چیز کا انکار کر سکتے کوئی انسان کہ نہیں نہیں اللہ نے تو دی نہیں، میں تو خود ہی پیدا ہوئی تھی. اور اگر جو یہ مانتا ہے کہ یہ زندگی اسی کی دی ہوئی ہے، پھر وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنا وقت نہیں اس کو دینا، میں نے اس کی مرضی سے نہیں چلنا، میں نے یہ مال اس کے راستے میں نہیں دینا، میں نے اپنی صلاحیت نہیں اس کے لیے لگانی. بیسیکلی تو پھر انسان یہ کہہ رہا ہے جس نے مجھے وقت دیا میں نے اسی کو نہیں دینا، جس نے مجھے دماغ دیا میں نے اسی کے راستے میں نہیں لگانا، جس نے مجھے مال دیا میں نے اسی، کیسے کہہ سکتے ہو؟ ثم یمیتکم، پھر وہ موت دے گا تم کو، موت بھی کوئی تمہارے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور موت بھی ایک اللہ کی طرف سے رحمت ہے. جب انسان کو بڑھاپا بہت آ جاتا ہے اور ایڑیاں رگڑنے لگتا ہے تو اس وقت خود اپنے لیے مانگتا ہے کہ اللہ اب تو موت ہی دے دے. اور سوچیں کہ آج تک کے جتنے انسان اس زمین پہ آئے ہیں سبھی یہاں پہ چل پھر رہے ہوتے تو یہاں پہ حال کیا ہوتا. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندگی دے گا، وہ بھی تمہارے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. دیکھو انسان کتنا بے بس ہے جب وہ موت آتی ہے. ہاں یہ اتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے، کتنے بڑے فرعون آئے، کتنے مغرور، کتنے متکبرین، جب موت آئی کیسے انہوں نے ہتھیار ڈال دیا، ہار مان لی موت کے سامنے، لڑتے نا موت سے اس وقت، بہت بڑی اپنے آپ کو چیزیں سمجھتے تھے، بڑا غرور تھا، بڑی بڑی حکومتیں تھیں، تو لڑتے نا موت سے، اور تو اٹھ کے آ جائے نا یہاں پہ، ہم نے نہیں مرنا. وہی ہے جس نے زندہ کیا، وہی ہے جو موت دے گا، وہی ہے جو تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. اس کے بعد آپ کیا سوچتے ہو؟ کیا آپ کو لگتا نہیں ہے اس کے بعد کہ ہم کسی کے قبضہ قدرت میں ہیں؟ کوئی ہے پاور ہمارے اوپر जो हमें कंट्रोल कर रही है, जिसके हाथ में हमारी जिंदगी और मौत है। हम टोटल इन कंट्रोल हैं, हम अपने आप को आज़ाद समझते हैं, टोटली इन कंट्रोल उस हस्ती के, और फिर भी इतने बेवकूफ़ हैं कि फिर भी उसको नाराज़ करते हैं, फिर उससे ताल्लुक़ नहीं रखते, फिर उससे दूर भागते, जिसके कंट्रोल में मेरी ज़िंदगी और मौत है, जिसके कंट्रोल में मेरा वजूद है, जिसके कंट्रोल से मेरी सस्टेनेंस है। मैं ज़िंदा आज बैठी हूँ और बोल रही हूँ क्योंकि उसने मुझे ये ताकत दी और ये वजूद दिया और ज़िंदगी दी और सांस दी। वो उसके साथ ही अपना रابطہ डिस्कनेक्ट करके सोचते हैं कि हम बड़े मज़े कर लेंगे और बड़ा अच्छा हम कर रहे हैं और पता नहीं उससे भाग के हमें कुछ मिल जाएगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने गिला किया है, इन्नल इंसान लकफूर। देखो, इसको मैंने ज़िंदगी दी, फिर मौत दी, फिर दोबारा उठाऊंगा, और फिर ज़िंदगी दे के ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि क्या कुछ नहीं निज़ाम तुम्हारे लिए चला दिया, क्या कुछ नहीं दिन और रात, कहीं बारिशें हो रही हैं, कहीं ज़मीन में चीज़ें तुम्हारे लिए मुसख़र कर दी, कहीं कश्तियाँ चल रही हैं, कहीं आसमानों में जहाज़ उड़ रहे हैं, कहीं आसमान को थामा हुआ है, कहीं हवा है, कहीं ये चरिंद परिंद हैं, कहीं दरख्त हैं, कहीं तरह तरह के खाने हैं, क्या क्या नहीं तुम्हारे लिए। इन सब चीज़ों को गिनने लगो, तुम गिन भी नहीं सकते, इसके बावजूद इन इंसान अल कफूर, यकीनन इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है, बड़ा ही नाशुक्रा है। इस एक नेमत का भी शुक्र अदा करना होता इसको, जो ज़िंदगी की नेमत है, तो ये नहीं कर सकता था। और बेशुबहा नेमतें, इन इंसान अली रब्बी ही लकनूद, अल्लाह ताला ने सूरह आदि आद में फरमाया ना, बेशक इंसान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है। उसमें तो घोड़ों की मिसाल दे के अल्लाह ताला ने कैसे बता दिया कि देखो जानवर भी है ना, घोड़ा भी है, वो भी अपने मालिक को पहचानता है, वो भी मालिक के कहने पे सुबह सुबह उठता है और वो हमले करता है मालिक के कहने पे, और किस तरह गर्द उड़ाता जाता है और किस तरह दौड़ता है, ये मालिक की एक एड़ लगाने पे वो उस मालिक के हुक्म को कैसे समझता है। इंसान, तू तो इंसान है, तू तो अशरफुल मखलूकात है, तुझे तो अल्लाह ने ऐसा दिमाग दिया जो ऐसा किसी और को भी नहीं दिया, तू नहीं ना अपने मालिक को पहचाना, जानवर तक पहचानता है अपने मालिक को, हालांकि क्या खाता है, दोने वाले खा लेता है जो मालिक उसके सामने डाल देता। तुम्हें तो मालिक ने लाड ही बहुत किए, तुम तो उसके बड़े लाडले हो, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा आपको कुरान में देखें सारे कि आप कितने लाडले हैं। लकुम लकुम, सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ने जितना कुछ ज़मीन के ऊपर है तुम्हारे लिए पैदा किया, तुम तो लाडले थे, तुम ही नाशुक्री करने लगे। ये है पैगाम जो हमने सारी इंसानियत को देना है, ये है वो बात जो हमने सबको बतानी है, क्यों अपने अल्लाह से दूर भागते हो, वो तो रऊफ़ और रहीम है, और तुम क्या उसको बना लिया है कि बस वो हमें कोई पाबंदियां लगा देगा, फिर हमें ये करना पड़ेगा, फिर हम उसकी तरफ आ गए तो पता नहीं, वो ये तुम्हारी सोच है, क्या तुम ये नहीं देखते जो तुम्हारे पर एहसान आते हैं उसके। अल्लाह अकबर, जब आप कहते हैं ना हम क्या लोगों को बताएं, हम क्या उनको कैसे तबलीग करें, ये बातें तबलीग करने की हैं। इन चीज़ों में से किसको कोई को कौन डिनाई कर सकता, कौन कह सकता नहीं जी ये नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सिंपल मैसेज है, सिंपल, इसको पहले खुद समझें, खुद अप्रिशिएट करें, फिर उसके बाद फिर आगे पहुंचाएं। अल्लाह ताला ने एक जगह कुरान पाक में फरमाया, व इन्ना रब्बका लज़ू मग़फ़िरतिन लिन्नास अला ज़ुल्मिहिम। अल्लाह ताला तो वो है कि लोगों के गुनाहों के बावजूद बावजूद उनके लिए मग़फ़िरत वाला, उनके ऊपर अपनी मग़फ़िरत करता है। लिकुल्ली उम्मतिन जालना मनसकन, हर एक उम्मत के लिए हमने एक मनसक बनाया है। अब मनसक की चूंकि डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं, इसलिए आप सारी ही लिख लें। नुसुक कहते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया जो एकामे हज है उनको भी मनासिक के हज कहा जाता है, इसी तरह कुर्बानी के लिए भी ये लफ्ज़ आता है, इसी तरह शरीयत के लिए भी जो भी एकामे शरीयत हैं वो सारे भी इसके अंदर आते हैं। एक जगह पे आता है इस तफसीर में کے بارے میں اس کی تفسیر میں ایک قول آتا ہے کہ کفار جو تھے مسلمانوں کو ان کے ذبیحہ کے متعلق بحث تکرار کرتے تھے، کہتے تھے تمہارا مذہب بھی بڑا عجیب ہے، جس جانور کو تم خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے ہو اس کو کہتے ہو یہ حلال ہے، یعنی جو ذبح کرتے ہو، اور جس کو اللہ تعالیٰ مار دے یعنی مردار ہے تم کہتے ہو یہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کے اس جدال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو اگر ہم اس سے یہاں پہ ذبح کے احکامات لے لیں یا پھر ہم یہ کہیں کہ شریعت کے جو بھی احکامات ہیں، تو فرمایا لی کلی امت ان جعلنا منسکن، ہر ایک امت کے لیے ہم نے اس کے منسک رکھے ہیں، یعنی اس کے ایک طریقے، چاہے ذبح کے ہیں چاہے شریعت کے ہیں، بیس جو ہے سب کی تو ایک ہے توحید، مگر اس کے بعد ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھے یہ احکامات۔ تو ہم ناسکوہو، وہ اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں، وہ اسی کے مطابق عبادت کرنے والے ہیں، اسی طریقے کے پر ذبح کرتے ہیں یا انہی کے مطابق اپنی عبادت کرتے ہیں یا انہی کے مطابق اپنی شریعت کو فالو کرتے ہیں۔ تو آپ نے سمجھ آ گئی نا کہ یعنی احکام شریعت بھی کہہ سکتے ہیں، مناسک کے حج یا قربانی کے مناسک یہ بھی کہہ سکتے ہیں، عبادت کے جو احکام ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جو ایک اور بات بھی ہے کہ مشرکین اور جو اسلام کے مخالف تھے وہ ان احکامات میں جدال کیا کرتے تھے، جھگڑتے تھے، اور بنیاد کیا ہوتی تھی کہ ہمارے آبا و اجداد میں تو یہ احکام نہیں تھے، نئی باتیں ہم تو سن رہے ہیں۔ تو بتا دیا گیا کہ پچھلی کسی شریعت اور کتاب سے نئی شریعت اور کتاب کا کمپیریزن کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو اس کے وقت میں ایک خاص شریعت دی، ایک خاص کتاب دی، جس کو فالو اس وقت اس امت کو کرنا ضروری تھا۔ جب دوسری امت آئی تو دوسری شریعت آئی اور اللہ کی طرف سے ان کو اور شریعت دی گئی، تو اس وقت ان کو اپنی شریعت کو فالو کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر اس کا جو بعد میں آئی شریعت، اس کا پہلی جو شریعتوں سے کوئی چیز مطلب نہیں ملتی تو اس سے نہیں فرق پڑتا۔ کئی چیزیں آپ دیکھیں یہود کے اوپر حرام تھیں، ان کے کئی ان کی وجہ سے، جرائم کی وجہ سے۔ فلا یُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، تو نہ جھگڑیں وہ تجھ سے معاملے میں۔ پھر ان کو کہا گیا کہ پھر کیوں تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں جھگڑتے ہو، یہ تو کوئی جھگڑنے کی بات نہیں ہے، لوگوں کو چاہیے کہ اس میں آپ سے جھگڑا نہ کریں۔ ٹھیک ہے، وَدْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، اور اے نبی آپ کیا کریں، بس آپ دعوت دیتے رہیں اپنے رب کی طرف، یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، حق کی دعوت آپ نے جاری رکھنی، یہ چاہے آپ سے جھگڑا کرتے رہیں۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيم، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ مطمئن رہیں، آپ ہی صحیح راستے پر ہیں، آپ ان کے جھگڑوں کی پرواہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جدال کرے اور یہ باتوں کے اوپر اعتراض کرے کہ آپ کیوں اس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ، اور آپ ان کی جو ان باتوں سے، ان کے جدال سے متاثر نہ ہو، آپ اپنا فرض نبھاتے رہیں، حق کی طرف دعوت دیتے رہیں، کیونکہ آپ حق پہ ہیں، آپ صراط مستقیم پہ ہیں، اور آپ کے جو مخالف ہیں وہی راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک بات ہے کہ کوئی اگر آج یہ کہے، دیکھا جی یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے نا کہ ہر ایک امت کو اللہ تعالیٰ نے اس کا منسک دیا ہے، تو لہٰذا ہمارا بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے، تو اس لیے ہم تو اپنی اپنی شریعت پہ ہی عمل کریں گے۔ نہیں، وہ شریعتیں اس وقت کے لیے ویلڈ تھیں، اور جو ہی اگلی شریعت آ گئی وہ ایکسپائر ہو گئی، یہ سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے، اب ایکسپائرڈ چیز کو تو نہیں نا کوئی لیتا، اگر آج آپ بھی کوئی ایکسپائرڈ چیز لیں تو وہ کیا ہو جائے، وہ آؤٹ ڈیٹ ہو چکی ہے، اب اس کے اوپر اس کو نہیں کھایا جا سکتا یا اس چیز کو نہیں آپ یوز کرتے۔ اسی طرح شریعت وہ اب آؤٹ ڈیٹ ہو چکی ہے، ایکسپائر ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت بھیج دی جو اب قیامت تک کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب تو پوری دنیا کے لوگوں کو یہ حکم دے دیا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی ہے اس کی مخالفت نہ کریں۔ ٹھیک ہے، وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ عَالَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اگر وہ پھر بھی آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، پھر بھی مانتے نہیں ہیں، باز نہیں آتے تو آپ کیا کریں, فقول اللہ عالم بما تعملون, تو آپ کہہ دیجئے اللہ جانتا ہے زیادہ بما تعملون, جو تم عمل کرتے. پھر ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں, ان سے کہیں لکم دینکم ولی دین, پھر ٹھیک ہے, میرا دین میرے ساتھ, تمہارا دین تمہارے ساتھ, ٹھیک ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہمارے اعمال ہمارے ساتھ, تمہارے اعمال ہمارے ساتھ. عمل جو ہوتا ہے نا اس کے اندر نیت بھی ہوتی ہے اور جو فعل بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو عمل اور فعل میں تھوڑا سا یہ ڈفرینس ہے. فعل کوئی بھی کام ہو سکتا ہے بغیر کسی نیت کے, عمل جو ہوتا ہے وہ نیت اور کام دونوں شامل ہیں. یعنی تمہارے عمل ہر قسم کے اللہ کی نظر میں ہیں. یعنی کیا مطلب ہوا کہ اللہ تمہاری نیتیں بھی جانتا ہے اور تمہارے کام بھی جانتا ہے. اب یہاں سے پتہ چلا کہ دین کے معاملے میں بحث نہیں کرنی چاہیے, بس یہ بتا دیں کہ اللہ کا حکم تو یہی ہے اور اللہ جانتا جو پھر تم کر رہے ہو. ہمارے دین میں نا یہ بحثیں تکراریں اور یہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ گالم گلوچ ہو جانا اور ہاتھا پائی ہو جانا اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اور پھر اس کے بعد ایک نے منہ ادھر کر لیا ایک نے منہ ادھر کر لیا, یہ چیزیں نہیں ہیں. آپ بات کرو اچھی طرح کرو, بحث کرو بھی اچھی طرح کرو, یہ بھی قرآن کہتا ہے کہ آپ اچھی طرح جدال بھی کریں, مگر جدال کا مطلب ہوتا ہے بحث ڈیبیٹ کوئی کرنا. جب آپ دیکھتے ہیں کہ حد سے بات گزر رہی ہے اور آوازیں اونچی ہونے لگی ہیں اور بات بہت بڑھ گئی ہے کہ مطلب بری بری باتوں تک آنے لگی, ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے اوپر آ گئی, تو پھر ایک طرف ہو جائیں, نہ جھگڑے کو طول دیں نہ کسی کے ساتھ اس طرح کریں کہ پھر وہاں پہ شیطان آ جاتا ہے. اللہ یحکم بینکم یوم القیامت, اب اس کا سلوشن کیا ہے کہ اب ہوگا کیا, اب کیسے پتا چلے گا پھر ان کو کہ ہم تو سوچتے ہیں نا اب ہم نے ہی پروف کرنا ہے ورنہ پتا کیسے چلے گا. اب چاہے مجھے دیکھیں ہم نے کسی کی یاد رکھی, کسی کی انا کو نہیں جگانا ہوتا کہ میں جیت گئی ہوں نا یہ مجھے پروف کرنا ہے, میں جیت گئی ہوں یہ ہمارا ایم نہیں ہونا چاہیے, بس حق کو واضح کر دیں. اب جب ہم کہتے ہیں اس نے مانا ہی نہیں مانا نہیں, اب میری تو تحقیر ہو گئی, اب کیسے ہوگا, اب میں اس کو کسی طرح بھی کروں, اب الٹے سیدھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں دوسرے کو, بس یہ باور کرانے کے لیے کہ تمہیں کیا سمجھ ہے اصل تو مجھے ہی ہے, وہ چیزیں پھر آؤٹ آف ہینڈ ہو جاتی ہیں. جب آپ دوسرے کے سامنے رکھ دیں بات, وہ پھر بھی اگر آپ کے ساتھ جھگڑا کر دیں گے تو پھر کہیں اللہ عالم بما تعملون بھائی, اور پھر اب اس کے بعد کیا ہے, اب ہوگا کیا, پھر حق ان کے اوپر کیسے واضح ہوگا. اللہ ہے نا وہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن. فی ما کنتم فیہ تختلفون, اس میں جو تم اختلاف کیا کرتے تھے, کس میں اختلاف کرتے تھے, یہ نہیں ہے کہ کون زیادہ خوبصورت ہے اور کون کم خوبصورت ہے اور کس کے پاس پیسے زیادہ ہیں اور کس کے پاس کم ہے, ان چیزوں کا اختلاف نہیں, بلکہ جو دین کے معاملے میں تم اختلاف کرتے تھے قیامت کے دن اس کے فیصلے اللہ تعالیٰ خود فرما دیں گے. تو اس لیے اس حد تک نیچے گرنے کی ایسے ضرورت نہیں ہوتی. وہ پوائنٹ نا کہیں اور ہی رہ جاتا ہے اور کسی اور چیز میں انسان پھر پڑ جاتا ہے. پتا ہے نا آپ کو جب اس قسم کے مباحثے ہوتے ہیں مجلسوں میں تو ہوتا کیا ہے, پھر بعد میں ایک دوسرے سے ملنے کے قابل بھی نہیں رہتے. آپ نے کیا خاک پہ پھر پیغام پہنچانا ہے, اگر ایک دوسرے سے منہ موڑ لیں گے تو اس لیول تک نہیں جائیں. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض, کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے نا, کوئی بھی کسی کا عمل اللہ کی نظر سے تو نہیں چھپا ہوا. ہم کہتے ہیں ہم نے بتا دینا, ہم نے ہی پروف کرنا ہے, ہم ہی بس, اب جب تک یہ مان نہیں لیتا اس وقت تک ہم, اللہ کو پتا ہے سب کچھ, جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں, اور صرف حال کا نہیں پتا, ماضی کا بھی پتا اور مستقبل کا بھی پتا ہے, اور صرف عمل نہیں پتا, ہر حرکت بھی پتا ہے, ہر ارادہ بھی پتا ہے, ہر نیت بھی پتا ہے, ہر بات پتا ہے. انسان تو ایک ڈگری لے کے ہی بہت خود کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم نے اس فیلڈ میں یہ ڈگری لی ہوئی, اور میں جی کوئی کسی سے پوچھتا ہے جی آپ کتنا پڑھے ہوئے, اچھا یہ ڈگری آپ کے پاس کس سبجیکٹ میں, اچھا اس میں, اچھا کسی نے ماسٹر کیا, کسی نے پی ایچ ڈی, کسی نے پوسٹ گریجویٹ پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے, تو وہی کہتے ہیں واہ واہ بھائی ماشاء اللہ بہت بہت زبردست, یہ ये तो इनका एक फील्ड का इल्म होता है जिससे हम इतने मुतासिर हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने पूछा, क्या तुम ये भी जानते हो, ये इल्म तुम्हारे पास है? अलम तालम, ऐन लाम मीम से तालम, ठीक है, क्या तुम्हें ये भी कोई इल्म है? पोस्ट ग्रेजुएट और पोस्ट डॉक्टरेट डिग्रियां तो तुमने ले ली, और इतना इल्म भी तुम्हारे पास है कि अल्लाह जानता है आसमान और जमीन सब का इल्म उस अल्लाह के पास है। तब इंसान को पता चलता है कि मेरे पास तो कोई इल्म है ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और उसका इल्म तो कामिल है। और तुम्हारे पास जो इल्म है उसकी क्या हैसियत है कि एक फील्ड में अगर इल्म ले भी लेते तो वो भी मुकम्मल नहीं होता, और एक फील्ड का जिसके पास है दूसरे फील्ड के बारे में वो कुछ जानता ही नहीं। इसके बावजूद इंसान ये सोचता है कि अपनी ज़िंदगी के फैसले मैं खुद करूँगा, और मुझे ज़्यादा पता है कि कौन सी चीज़ है जो हमारे लिए बेहतर है, और हम किस तरह जिए, और हम अपनी तिजारत कैसे करें, हम अपने घर का निज़ाम कैसे चलाएं, हकूक किसके क्या हैं, मेरा फ़र्ज़ क्या है, मुझे क्या मिलना चाहिए, और मुझे मेरी ड्यूटी क्या है, ये मैं खुद बताऊँगी। कौन होता है कोई मुझे बताने वाला? अब कुरान हमें बताएगा कि क्या करना है, ये तो हमें ज़्यादा पता है ना कि आज के ज़माने में कैसे जीना है। क्या ख्याल है, या अल्लाह है जो बताने वाला है? देखें, उसी से इंसान फैसले लेता है या मशवरे लेता है जिसके पास इल्म होता है। आपको कोई सीने में खुदा ना खास्ता पेन हो तो आप फौरन एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, एक डॉक्टर के पास जाते हैं जिसका इल्म आप समझते हैं कि इस चीज़ का। ऐसे थोड़ी है किसी दुकानदार के पास जाके पूछने लगे मेरे मुझे ये हुआ है, क्यों नहीं उससे पूछ क्यों नहीं लेते? या जो सफाई करता उससे पूछ लें जी हमारे तो इस तरह से सर में दर्द है, अब इसका क्या करना चाहिए? क्योंकि आपको पता है इसके पास इल्म नहीं है। कभी भी आप बेइल्म के पास जाके नहीं पूछते उस फील्ड को जो कि आप समझते हैं कि इसको ये नहीं जानता होगा, इसको क्या पता। आप कहते हैं ना, इसको क्या पता। जब आपका ईमान है कि अल्लाह ये अल्लाह यालमु मा फिस समाई वल अर्द, अल्लाह तो बेशक सब कुछ जानता है जो आसमान और ज़मीन में है, तो क्या हमारी जिंदगियों को नहीं जानता? क्या उसको ये नहीं पता कि हमारे नफ़ा और नुकसान क्या हैं, हमने कैसे आज के ज़माने में चलना? लेकिन उससे जब वो कोई हुक्म देता है या उससे कोई बात हमारे तक पहुँचती है तो हम उसका कहते हैं इसको क्यों करूँ, इसको तो अभी सोचूंगी, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये नहीं बल्कि जो मैं सोच रही हूँ वो सही है। आपका इल्म क्या है और उसका इल्म क्या है, कोई कंपैरिजन है? फिर भी हमें अपने इल्म पे ट्रस्ट है और अल्लाह के इल्म पे ट्रस्ट नहीं है। जो उसने हुक्म दिए ना हमें कुरान में, वो उसने अपने इल्म की बेस पे दिए हैं, अपने इल्म की बेस पे, फिर भी हम डाउट करते हैं उसके इल्म को, जबकि हम ईमान रखते हैं कि उसका इल्म सब चीज़ हर चीज़ पे मुहित है, हर चीज़ पे मुहित है, कोई चीज़ उसके इल्म से बाहर है ही नहीं। ये हमारा ईमान है कि नहीं है? तो फिर हमें कैसे डाउट होता है जब कुरान में कोई हुक्म आता है तो हम कहते नहीं ये नहीं, मेरी अकल ये कहती है। आप एक दुकानदार से नहीं जाके पूछ रहे कि ये डिजीज़ क्या है क्योंकि उसके पास इल्म नहीं है, इतनी आपको समझ है कि इल्म वाले से ही पूछना है। तो ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या आप इल्म वाले उस रब से नहीं पूछेंगे, मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, मेरा उठना बैठना चलना फिरना ज़िंदगी का मकसद ये सब क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, मेरे एज अ वाइफ क्या हकूक हैं, क्या फ़राइज़ हैं, मेरी एज माँ क्या हकूक और फ़राइज़ हैं, मेरे एज नेबर क्या हकूक और फ़राइज़ हैं, मैं एज मुसलमान मुझे क्या करना है, ये सब कौन बताएगा? मैं ख़ुद इनका फ़ैसला करूँगी या कोई और डॉक्टर बताएगा, दुकानदार बताएगा, राह चलता हुआ बताएगा, ज़माना बताएगा? हाँ, जिनका इल्म कितना है अल्लाह के इल्म के मुकाबले में, इन सब का भी इल्म मिल जाए तो कितना है, इसके बावजूद हम इनसे पूछते हैं, जो ये राह हमें दिखाते हैं हम उस पर चलना चाहते हैं, जो ये फैसला हमारे लिए करते हैं हम वो उसको करना चाहते हैं कि हाँ अब इन्होंने फैसले कर दिए ये पहनना है तो मैं यही पहनूंगी, इन्होंने इस माशरे ने फैसला कर दिया कि हमें ये रस्म व रिवाज करने हैं तो हमने वही करने, इन्होंने कहा है कि शादियाँ ऐसे करनी हैं तो हमने वैसे ही करनी है, क्योंकि ये इनके फैसले हैं और मुझे इनके फैसले सही लगते हैं, ये अल्लाह के फैसले सही लगते हैं। इस आयत पे यकीन हमें इसका प्रूफ तभी मिलता है जब हम देखें अपनी ज़िंदगियों में कि हम किसके फ़ैसलों के ऊपर चलते हैं। हमें क्या वाकई यकीन है कि अल्लाह है कुल इल्म का मालिक और अल्लाह का इल्म सा हर एक चीज़ का अहाता किए हुए? कहने को आसान है, हाँ कह सभी देंगे कि हाँ हमें यकीन है, लेकिन वाकई हमारी ज़िंदगी से नज़र आता है? इन नदाली का फी किताब, और ये सब कुछ एक किताब में है, यानी हाल माजी मुस्तकबिल सब चीज़ें, जितनी हमारी चीज़ें हैं वो सब एक किताब में लिखी हुई हैं। ये कौन सी किताब है? लोहे महफूज। हदीस में है कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया था, ठीक है, कलम को पैदा किया और उसने फरमाया लिख, तो कलम ने पूछा क्या लिखूं, फरमाया जो कुछ होने वाला है क़यामत तक, जो कुछ होने वाला है उसको लिख दे, तो कलम ने लिख दिया। इसी तरह इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि 100 साल की मसाफत में अल्लाह ने लोहे महफूज को पैदा किया, यानी इतनी बड़ी किताब है वो लोहे महफूज, इतनी बड़ी 100 साल की मसाफत में और मखलूक की पैदाइश से पहले, जब के अल्लाह ताला अर्श पे था, कलम को लिखने का हुक्म दिया, तो उसने पूछा क्या लिखूं, फरमाया मेरा इल्म, जो मेरा इल्म है, कलम ये नहीं था कि कलम को खुद ही इल्म है तो वो खुद ही लिखता जाता है, फरमाया जो मेरा इल्म मखलूक के मुतल्लिक क़यामत तक है उसको लिख, तो कलम चल पड़ा और क़यामत तक के होने वाले जितने अमूर हैं वो अल्लाह ताला के पास वहाँ पे लिखे हुए। और सही मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन की पैदाइश से 50,000 साल पहले, जबकि उसका अर्श पानी पे था, मखलूक की ये सारी तकदीर लिख दी थी। अब आप कहेंगे तो हमारी तो पहले ही लिखी हुई, अब हमने क्या नेक अमल करने? फौरन से हमें ये ख्याल आने लगता है, ये अल्लाह ताला का इल्म, ये जो तकदीर का इल्म है जो अल्लाह ने किताब में लिखा हुआ है, ये वो इल्म है कि जिसको हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला को हाल माजी मुस्तकबिल सब कुछ का पता है, तो उस वक़्त भी अल्लाह ताला को मुस्तकबिल का सब कुछ पता था कि क्या होने वाला है, किसने कब पैदा होना है, क्या सब कुछ उसको पता है, कौन क्या करेगा ये भी सब पता है। हम तो कोई इल्म नहीं रखते ना, कोई इल्म नहीं, बिल्कुल मैं कहती हूँ 0 लेवल पर हमारा इल्म है। मुझे नहीं पता अभी दूसरे कमरे में क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता मेरे घर के बाहर क्या हो रहा है, इतना सा भी इल्म है। मुझे नहीं पता मेरे पीछे अगर कोई खड़ा हो तो वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, यानी हमारे इल्म का नुक्स इतना ज़्यादा है। इवन देन जब हम किसी को देखते हैं, अब वो ऐसे गाड़ी चला के जा रहा है तो हम कहते हैं इसने ज़रूर अब एक्सीडेंट करना है, देखना ज़रा, और आगे जाके उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो अब वो कहे आप ही हैं जिसने मेरा एक्सीडेंट कराया, क्योंकि आपने कहा था ना कि इसने ज़रूर एक्सीडेंट करना है, तो आपने ही कराया। नहीं, वो मैंने नहीं कराया, मैं तो देख के मुझे पता चल रहा है कि इसकी चाल ये है, तो इसने ऐसा ही निकलना। अल्लाह ताला को उस, अब हमारे जैसे बंदा एक ऐसी बात कर दे तो हम कहते हैं अल्लाह ताला को तो हर एक का इन एंड आउट सब कुछ पता है, ये उसका प्रायर इल्म है, बिफोर द हैपनिंग ऑफ द इंसिडेंट, ये अल्लाह का प्रायर इल्म है, जो तकदीर है जो उसने किताब में लिख दिया हुआ, जो 50,000 ईयर पहले मखलूक के, अब जो मखलूक शुरू हुई थी वही करोड़ों करोड़ों साल पहले, पता नहीं कब शुरू हुई, जब आदम अलैहिस्सलाम आए कितना ज़माना गुजर गया, उससे भी 50,000 ईयर्स पहले, सोचें मखलूक के ही 50,000 ईयर्स पहले अल्लाह ताला ने लिख दिया था, 2016-17 के अंदर ये लोग बैठे होंगे ये बात कर रहे होंगे। अल्लाह अकबर, इन ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, ये है अल्लाह के ऊपर बड़ा आसान, तुम्हें लगता होगा ये मुश्किल है, उसको कैसे इतना इल्म, उसको कैसे इतना पता, नहीं, ये अल्लाह के ऊपर बहुत आसान है। और वो अल्लाह है जिसने तुम्हें ये सारे हुक्म दिए हैं जो इस किताब में, वो अल्लाह है जिसने तुम्हें शरीयत दी है, वो अल्लाह है जिसने तुम्हें दीन सिखाया, समझाया और बताया कि कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए बेहतर है और कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, उस अल्लाह ने बताया, तो सोचें उसका बताना कितना वैल्यूएबल है, उसकी बात कितनी वैल्यूएबल है, जिस रब का इल्म इतना है वो बता रहा है, तो हमें सारा आंखों पे लेना चाहिए, तो वो रब बता रहा है, वो जिसका इल्म इतना बड़ा है, इतना वसी है, उस रब ने दिए ये अहकामात, सोचें तो सही किसने दिए, और फिर हम इनको अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, हम इनको ऐसे ही समझते हैं कि बस हाय हाय पुराने ज़माने के और पता नहीं आउटडेटेड से और पता नहीं वो, ये तो पता नहीं हमने मान लिए तो हम भी कोई इस तरह के बन जाएंगे, बस अजीब से ही ऐसे फनेटिक से नज़र आएंगे, कुछ क्रेज़ी से लोग नज़र आएंगे, हम कैसे ये मान लें। फिर उसके बाद ये कहते हैं ना भी मुंह से बोलते हैं तो दिमाग में ये होता है कि पता नहीं क्या बन जाएंगे हम। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, डेप्थ में जाए ना आयतों की तो सही पता चल जाता है कि क्या हम हैं, हमारा ईमान क्या है। इन आयतों के सामने ख़ुद को खड़ा करके देखें, याबुदून मिन दूनिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, वो इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा उनकी जिसके बारे में अल्लाह ने कोई दलील ही नहीं उतारी। कहीं कोई दलील, कहीं प्रूफ है, कहीं कोई इस बात का कहीं से कोई एविडेंस मिलती है, कोई लॉजिक बनती हो कि कोई और भी खुदा है। वमा लैसा लहुम बिही इल्म, और ना ही उनके पास इसका कोई इल्म है, यानी कोई ठोस इल्म भी नहीं है कि कोई सॉलिड बात हो, कोई सॉलिड इल्म हो। जब उनसे पूछे क्यों इनका इबादत करते, जो हमारे माँ बाप भी इसी तरह करते थे, हमारे तो सारे ही इसी तरह करते थे, ये कोई दलील है? वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन नसीर, और ज़ालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है, यानी इनकी जहालत को दूर करने के लिए अब कोई नहीं इनकी मदद कर सकता। जो बेसलेस बात के ऊपर अपनी दीन को खड़ा करके करें और बस अड़े रहे उसके ऊपर कि बस हमने यही मानना। अब जाहिर है उनके पास कोई दलील तो है नहीं कि वो पेश करें दलील और कहें हमने इस बेस के ऊपर हम ये मानते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई है। पता नहीं किस किस को, सांप को और दरख्तों को और पत्थर के बुतों को और मूर्तियों को और किस किस को पूज रहे हैं, इसकी क्या दलील है? और तो और ये भी मैंने सुना कि जो फिल्मी हीरो और हीरोइन है उनके भी बुत बना के तो उनको भी पूजने शुरू हो गए। कोई अकल की, यानी सोचें ज़रा कि अल्लाह ने क्या बनाया है और किसके आगे झुक रहे हो। वो कभी कहीं किसी को ख्वाब आ गया, अब ख्वाब के बेस के ऊपर भी कोई किसी को पूजा करना शुरू हो जाता है। किसी के पास जी फलाने की हमारे बड़े पहुँचे हुए थे, उन्होंने हमें ये कह दिया, बस ऐसे ही बातों से बातें आगे। وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ ان کفار کا بھی سننا تو ہے نہیں, انہوں نے بس بغیر دلیل کے اندھوں کی طرح اسی چیز کو ماننے جانا, سمن بکمن امیون ان کا حال ہے۔ تو پھر جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اس کو بھی برداشت نہیں ہوتا۔ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر, اب پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے, ریئیکشن کیا ہوتا ہے جب آیتیں سنتے ہیں قرآن کریم کی؟ آیاتنا, آیات مراد یہاں پہ قرآن کی آیتیں ہیں, تو کیا ان کا حال ہوتا ہے؟ ان کے چہرے جو ہوتے ہیں وہ ان پہ ناگواری ہوتی ہے, قرآن سننا بھی نہیں چاہتے۔ دیکھیں, یاد رکھیں, جو ایمان والا ہوتا ہے نا اس کو قرآن سن کے خوشی ہوتی ہے, اور جس کا ایمان نہیں ہوتا نا اس کو ناگواری ہوتی ہے, وہ منہ چڑھاتے ہیں کہ یہ کیا۔ استغفر اللہ ربی, کفار تو کہتے ہی تھے کہ جو ہے نا لا تسمعوا هذا القرآن, اور نہ سنو اس قرآن کو, ولغوا فی, اور تو شور مچاؤ جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی نہ سن سکے اور نہ کچھ ہے, یعنی ان سے اتنا ناقابل برداشت تھا۔ استغفر اللہ, بعض ڈر لگ رہا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ بعض مسلمانوں کا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ قرآن ان کو نہ برداشت نہیں ہوتا, اگر قرآن کہیں لگا ہو تو پھر وہ وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں, پہلے تو پہلو بدلتے رہتے ہیں کہ آئے ہائے یہ کیا انہوں نے شروع کر لیا, اور کہیں کسی چینل پہ اگر قرآن آ رہا ہو تو وہ بھی نہیں ان کو برداشت ہوتا, جلدی سے چینج کر لیتے ہیں, یعنی ان سے قرآن سنا نہیں جاتا۔ تو قرآن کی نہیں اس کے اندر کوئی نقص, بلکہ یہ ان کے اپنے اندر خرابی ہے جو وہ برداشت نہیں کر پاتے اس کو۔ یکادون, اور کفار کا تو یہ حال ہے کہ یکادون یستون باللدین یتلون علیہم آیاتنا, جب ان کے اوپر قرآن کی آیتیں تلاوت کری جاتی ہیں پہلے تو ناگواری ہوتی ہے, پھر اس کے بعد غصے کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ قریب ہیں کہ وہ حملہ کریں۔ باللدین یتلون علیہم آیاتنا, ان لوگوں پر جو ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں ان کے اوپر حملہ کر دیں, یعنی اتنا ان کے تیور بدل جاتے ہیں, اس حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جیسے بھیڑیا کہیں حملہ کرتا ہے, اس طرح حملہ کرنے کے لیے وہ جاتے ہیں, ابھی ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی اٹھیں گے اور یہ کھا جائیں گے دوسرے, نہیں, جانور کی لیول پہ اتر آتے ہیں۔ سنی بھی برداشت نہیں ہے, سنی بھی, آپ کو پتہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ اسلام کا آغاز کے دن تھے, شروع کے دن تھے, اور مکے کی بستی کافروں سے بھری بھی ہے, اور ان کو اب یہ تھا کہ میں آگے دعوت دوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں لوگوں کو اعلانیہ آپ کی رسالت کی اطلاع دوں؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر ذرا صبر کر لو، ابھی ہم تعداد میں کم ہیں. لیکن ان پہ وہ بس تاری تھا، یہ اس چیز کا غلبہ تھا کہ بس میں جا کے بتاؤں، میں جا کے بتاؤں. تو جب انہوں نے آ کے لوگوں کو بتایا تھا اور قرآن کی تلاوت کی تھی، تو مشرقین مکہ تو ان پہ ٹوٹ پڑے، اتنا پیٹا، اتنا روندا. عتبہ بن ربیعہ نے آپ کے چہرے پہ بے تحاشا تھپڑ مارے. قبیلہ بنو تمیم سے تھے آپ، تو آپ کے قبیلے کے لوگوں کو جب خبر ہوئی تو وہ دوڑے ہوئے آئے، اور آپ کا یہ حال تھا کہ ناک کے پر مار کے، تو انہوں نے ناک سے خون جاری تھا اور یعنی بے ہوش ہو گئے تھے. تو وہ جب ان کے قبیلے والے آئے، انہوں نے آ کے ان کو چھڑایا اور ان کو اٹھا کے لے کے گئے. اب لگتا تھا کہ یہ بچ نہیں سکیں گے، جو ان کی حالت تھی، یعنی اتنا مارا تھا ان کو. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی کہ دن بھر بے ہوش رہے، جب شام ہوئی تو ہوش آیا. اور جب ہوش آیا تو والد ابو قحافہ اور قبیلے کے لوگ پاس کھڑے ہوئے تھے. ہوش آتے ہی پہلی بات جو انہوں نے یہ کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، کس حال میں ہے. وہ قبیلے کے لوگ اتنے غصے میں آئے، ان کو ملامت کرنے لگے کہ یہ تمہاری جو رسوائی ہوئی ہے، یہ جو تمہاری ذلت اٹھانی پڑی ہے، جو مار پیٹ تمہیں برداشت کرنی پڑی ہے، یہ انہی کی وجہ سے تو ہے، اور تم اٹھتے ہی ان کا پوچھنے شروع ہو گئے. اللہ اکبر. تو وہ چھوڑ کے وہ گھروں کو چلے گئے اور ان کی ماں سے کہہ گئے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے یہ باز نہ آئے، اس کا بائک آؤٹ کر دو، نہ اس کو کھانے پینے کو دو، نہ کچھ کرو. اور ماں کی ممتا تھی، وہ ماں کا جی بھر آیا اور کھانا لے کے سامنے آ گئی تو فرمایا کہ، حالانکہ دن بھر کے بھوکے ہیں، تب سے تو بے ہوش تھے، تو فرمایا کہ ماں خدا کی قسم میں کھانا نہیں چکھوں گا اور پانی کا گھونٹ نہیں پیوں گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کروں، جب تک میں جا کے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا، اس وقت تک نہیں میں کھانا پینا، ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا. اور اٹھنے کی یعنی ہمت نہیں تھی. تو یہ تو حضرت عمر کی بہن ہے، ام جمیل، یہ آ گئی تھی اور انہوں نے آ کے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دارالارکم میں خیریت سے ہیں، تو زخموں سے چور ہیں، چلا کیا، اٹھنے کی بھی حالت نہیں تھی. تو ماں کا سہارا لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ جھک پڑے، ان کو چوما، آپ کے ساتھ گریا تاری ہو گیا. اتنی انہوں نے پھر مشکلیں اٹھائی تھیں، لیکن یعنی اللہ کی جو آیات تھیں وہ اتنی مشکلات کے باوجود بھی تلاوت کرتے تھے. اور دیکھیں پھر کافروں کا حال کیا ہوتا تھا، یہ بتانے کا مقصد ہے کہ اس حد تک وہ آ جاتے تھے کہ ختم کر دیں گے ہم، اب اس کو چھوڑیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل افا انبی حکم بشر من ذالک، بتاؤ کہ کیا آپ ان سے کہہ دیں، کیا میں تمہیں اس سے بری چیز بتاؤں؟ جو ان کی ناگواری ہے اللہ کا نام سن کے، کیا اس سے بھی بری چیز تمہیں بتاؤں؟ النار، آگ. تم نے غصہ کیا نا، تو تمہارے لیے اللہ نے آگ بنا لی ہے. وعدہ اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا اس کا. کس سے؟ الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. وبئس المصیر، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس بڑی آگ میں وہ ڈالے گا جن لوگوں نے بھی کفر کیا. اور اس کے باوجود، اتنی صاف آیات کے باوجود، بعض لوگ اس کے اوپر جھگڑتے ہیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی کہ جو کافر ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، وہ آگ میں جائے گا. کئی مسلمان اس سے بھی برے ہیں، تو وہ کافر تو اچھے ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ قرآن میں دیکھ لو، اللہ نے وعدہ کیا. بہت بڑی آگ ہے، اس سے خود کو بچاؤ. سوچیں کہ ایمان پھر کتنی قیمتی چیز ہے، کیونکہ اگر اس ایمان سے نکل کے کفر میں کوئی چلا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ وعدہ ہے اللہ کا، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ جو بھی کفر میں جائے گا اس کے لیے آگ ہے. اب آگے جو آیات ہیں، یہ اس لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ آیات ہیں کہ ان میں، یعنی یا ایوہ الناس کہہ کے نا، ساری انسانیت کو ایک دعوت دی گئی ہے. قرآن میں دعوت دین کے دو حصے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک دعوت عمومی دعوت ہے، یعنی ساری بنی آدم کو، ساری بنو نوع انسان کو، تمام انسانوں کو، ہر فرد کے لیے، کہ کوئی کسی نسل سے بھی ہے، کوئی کوئی زبان بھی بولتا ہے، وہ کسی لینڈ پہ بھی ہے، کسی جگہ پہ بھی ہے، وہ کسی کو بھی پوجتا ہے، وہ کوئی بھی ہے، وہ قرآن کی اس دعوت کا مخاطب ہے جب اللہ تعالیٰ فرما دے یا یوحنا الناس، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا کا الا کافت للناس بشیرا و نذیرا، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے بھیجا ہے، ٹھیک ہے، بشیر اور نذیر بنا کے. تو یہ سب انسانوں کے لیے کہ کس کیا دعوت ہے یہ، کہ ایک اللہ پہ ایمان لے آؤ، رسول پہ ایمان لے آؤ، آخرت باس بعد الموت یعنی زندگی موت کے بعد جنت جہنم ان پہ ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے؟ یہ پہلے درجے کی دعوت ہے جو عمومی ہے، سب کے لیے عام ہے، عام سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور اس میں کوئی یہ نہیں ہوگا نماز پڑھو، روزہ رکھو، نیل پالش کیوں لگاتی ہو، نیل پالش نہیں لگا سکتی تم، حجاب لینا شروع کر دو، یہ اس دعوت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھ آ گئی؟ بس یہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ دعوت کس، جب کسی کو دینی ہے تو کس کو کون سی دعوت دینی ہے، ایسے نہیں ساروں کو پکڑ کے ایک ہی دعوت دینا شروع کر دے، نہ اس میں نماز کی بات ہوگی، نہ روزے کی بات ہوگی، نہ کسی اور چیز کی بات ہوگی، صحیح؟ اس کے بعد نمبر ٹو جو دعوت ہے وہ خصوصی دعوت ہے، اور وہ آپ اس میں کس کو ایڈریس کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو پہلی دعوت کو مان چکے ہیں، یعنی جو ایمان قبول کر چکے ہیں، اللہ پہ، رسول پہ، آخرت پہ، ساری چیزوں کے اوپر ایمان انہوں نے لے آئے، ٹھیک ہے؟ اب ان کو دعوت دی جائے گی عمل کے، عمل کرو، اور ایمان جو ڈیمانڈ کرتا ہے تم سے، جو ایمان لانے کے بعد ضروری چیزیں ہیں ان کو، ان کے اوپر چلو، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعوت ہے عمل کی، اس میں پھر نماز بھی آئے گی، روزے بھی آئیں گے، اور یہ سب چیز آئے گی. اس دعوت کو آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں یا یو لدینہ آمنو کہہ کے وہ دعوت دی گئی ہے، پھر اہل ایمان کو صرف دعوت دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور رکوع کی جو چھ آیتیں ہیں وہ دعوت قرآنی کے ان دونوں، یعنی جو عام ہے اور جو خاص ہے، وہ علیحدہ علیحدہ بیان کرتی ہیں. جو فرسٹ فور ہیں وہ یا ایھا الناس کے الفاظ ہیں پوری بنی نوع انسان کے لیے، جو آخری دو آیتیں ہیں یا ایھا الذین آمنو، وہ صرف اہل ایمان کو دعوت عمل دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ بات امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. چلیے آپ دیکھتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، سارے جہان کے لوگوں، ضریب مثل، بیان کی گئی ہے ایک مثال، فاستمعوا له، ایک مثال تم لوگوں کو بیان کی جاتی ہے، کالا ہے، گورا ہے، اسپینش ہے، پاکستانی، انڈین، کوئی بھی ہے، سارے انسانوں تمہارے لیے ایک مثال بیان کی گئی ہے. یہ نہیں کہا گیا ضرب اللہ، اللہ نے بیان کی، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ بیان کی گئی ہے ایک مثال، یعنی تاکہ کوئی لوگ بھی اس وجہ سے مثال سننے سے انکار نہ کر دیں، کوئی لوگ بھی پیچھے نہ ہٹ جائیں کہ ہاں یہ تو اللہ کی بات ہے، ہم نے نہیں سنی، ہم نے نہیں سنی. جیسے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ الرجک ہوتے ہیں اللہ کے نام سے، اللہ کا نام آ گیا کہ نو 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 نو، ہم نے نہیں یہ بات سننی، نہیں. دوری با مثلا، بس ایک مثال بیان کی گئی ہے، تم اس مثال کو غور سے سنو. کیا مثال ہے وہ؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ، یا وہ ہستیاں، لوگ نہیں کہیں، وہ ہستیاں، تدعون، تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ہرگز نہیں پیدا کر سکتے ایک مکھی بھی، ولا اجتمعوا له، چاہے وہ سارے جمع ہو جائیں اس کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اللہ کے سوا جس کو بھی کوئی پوجتا ہے، اول تو یہاں پہ سب سے زیادہ تو بتوں کی بات آتی ہے جن کو وہ پوجا کرتے تھے، مگر کوئی اگر کسی इंसान को भी पूजता है, कोई ऐसी हस्तियों को पूजता है, कोई आजकल जैसे कुछ बुत परस्त मजाहिब हैं उनके मैं देखती हूँ, कोई बाबा है बैठा हुआ, उसको उसकी पिक्चरें हैं, उसके सामने जी वो सर झुका रहे हैं, साईं बाबा फलाना ये जो भी उनके नाम रखे होते हैं, तो चाहे वो इंसान कह लें बुत कह लें, बुतों के पीछे भी कोई हस्तियाँ होती हैं जिनके उन्होंने बुत बनाए होते, सितारे हैं ये हैं, फरमाया जिसको भी तुम पूछते हो अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा में हर चीज़ आ जाती, जितनी चीज़ों को पूछते हैं, चाहे वो दरख्त हैं, चाहे वो सांप हैं, चाहे वो वॉट एवर, ठीक है, अल्लाह ताला ने बताया है कि वो हस्तियाँ कितनी हकीर हैं, वो कितनी बेबस हैं, वो कितनी छोटी हैं, इतनी ज़बरदस्त मिसाल बयान की गई है ना यहाँ पे कि शिर्क कितना बेसलेस है, तुम कितनी वीक चीज़ को पूजा कर रहे हो कि हरगिज़ नहीं पैदा कर सकते, वो एक मक्खी भी, मक्खी कितनी छोटी सी चीज़ है, इतनी छोटी चीज़ है कि वो यानी आप सोचे ना जब मक्खी कहीं बैठती है हम उसकी पूरे छोटे पर और वो भी नहीं देख सकते, उसकी आंखें वगैरह, छोटी सी चीज़ है और हकीर सी चीज़ है जिसको हम ऐसे ही बस उड़ा देते हैं, ऐसे करते तो उड़ जाती है ना, तो आप सोचे इतनी हकीर चीज़ को भी वो पैदा नहीं कर सकते, वला विजतमाऊ लहू, और चाहे वो सारे जमा हो जाएं जितने तुम्हारे जितनों को भी पूछते हैं ना लोग, जितने भी वो बुद्धा हो गया, वो साईं बाबा हो गया, वो फला हो गया, मैं इसलिए नाम ले रही हूँ ताकि जितने माबूदाने बातिल हैं अल्लाह के सिवा जिसको भी पूजा जाता है वो सब को भी मिला लो, चाहे वो कोई सितारे हैं, चाहे वो कोई भी हैं, वो सारे भी मिल जाए, चाहे कोई औलिया अल्लाह ही क्यों ना हो, यहाँ पर तो ख़ास मुशरिकीन को बताएगा ना, लेकिन कोई भी एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते चाहे वो सारे जमा हो जाए, एक मक्खी नहीं, इससे नहीं पता चलता कि वो कितने बेबस हैं, कितने बेबस हैं, और यहाँ पे ख़ास तौर पे मक्की का इसलिए जिक्र भी किया गया कि जब ये बुतों वगैरह कोई पूजा करते थे तो आपने आज भी देखा होगा ना उनके सामने मिठाइयाँ और फल वगैरह रख देते तो उनके ऊपर आके मक्खियाँ बैठती, तो वो मक्खियाँ बैठती तो उसकी भी बात आगे सुन लें, वह ई यसलुब हुमुदुबाबु शैअन, और अगर छीन ले उनसे मक्खी कोई भी चीज़, यानी अब वो उसके ऊपर बैठी हैं फल पे मिठाई पे, अब वो मक्खी उड़ा के ले गई या उससे कुछ भी खाना बैठ गई तो वो कुछ उसके चिमट जाते, वो फौरन कहते हैं वो जब मक्खी बैठती है ना फौरन ही उस चीज़ को अपने अंदर ले लेती है, तो अगर ये मक्खी वो ये तो ये बुतों के खाने हैं ना, ये उसको वो जो उनके पंडित या वो होते हैं किसी और को नहीं खाने देते, ये बुतों के सामने रखा हुआ है, जब तक हम ये अपनी पूजा पाठ नहीं कर लेंगे कोई नहीं इसको खा सकता, अब वो बैठे में अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, मक्खी आई है और वो उसमें से उड़ा के ले गई है, और ये खड़े के खड़े बुत वैसे ही खड़े में हैं कि वो उनको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये इनके ऊपर चढ़ाया हुआ खाना वो लेके जा रही है, और ये इतने हकीर हैं कि ये उसको भी नहीं कुछ कह सकते, और उनके जो पंडित हैं वही उस मक्खी को उड़ा रहे होते हैं ऐसे पंखी झलके या अपने हाथों से उसको उड़ाएंगे, बुत ये भी नहीं कर सकते कि उस मक्खी को उड़ा दें, इससे नहीं पता चलता कि बुत कितने कमज़ोर हैं, ला यस्तन्किदूहु मिन, नहीं वो छुड़ा सकते उसको उससे, ये इस खाने को जो कोई चीज़ है जो शय है कोई भी, ला यस्तन्किदूहु नहीं छुड़ा सकते उसको उस चीज़ को इससे, किससे, मक्खी से, हु की ज़मीर मक्खी की तरफ जा रही, इस मक्खी से वो कुछ भी नहीं छुड़ा सकते, मक्खी लेके उड़ भी गई और ये उससे वापस ला के दिखाए ना, ये सारे मिल के भी दौड़े उसके पीछे और उससे वापस लेकर आए जो वो लेके गई है, नहीं ला सकते, और फिर इतनी बड़ी बात है, ये तीन वर्ड्स जो है ना, तीन वर्ड्स ये सारे जो शिर्क और इसका कारोबार है इसको इतना हकीर बता दिया गया इसके अंदर कि ये कितना वीक है ये सब कुछ, दाउफत तालिब वल मतलूब, किस कदर कमज़ोर है तालिब भी और मतलूब भी, जो तालिब है, तालिब मतलब कौन, यानी जो इनका पुजारी है जो इनसे मांग रहा है वो भी, और मतलूब जो बुत है वो भी, दोनों ही कमज़ोर हैं, आप देख लेना, हर इंसान का कोई आइडियल होता है, कोई वो होता है जिसके पीछे वो भागता है, जिसको वो बड़ा समझता है, जिसको वो बहुत लुक अप टू करता है। तो अगर किसी का आइडियल ही घटिया है तो लाजमन वो खुद भी घटिया ही होगा। अगर उसका आइडियल आला सतह का होगा तो वो खुद भी आला होगा। अब इससे इन लोगों के जहनों का मयार देख लें, इनकी जो थिंकिंग है उसका लेवल देख लें, कि जो पत्थर के बुतों को अपने महबूद समझ के उनके आगे झुकते हैं, जिस तालिब का मतलूब आइडियल एक बेजान सा स्टैचू है जो अपने ऊपर से एक मक्खी तक को नहीं उड़ा सकता, उसकी इसका अपना क्या हाल होगा। अगर सोचे ना, जिसका आइडियल इतना बेबस है तो इसका अपना क्या हाल होगा। जिसको सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया ना, मिन अन्नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, लोगों में कुछ ऐसे भी हैं अल्लाह के मुकाबले में कुछ और माबूद उन्होंने बनाए हुए, उनसे इस तरह मोहब्बत करने शुरू कर देते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। और जबकि तौहीद तो कहती है कि अल्लाह के अलावा इंसान का जो महबूब मकसूद और मतलूब है वो सिर्फ अल्लाह है, भाई की कोई चीज नहीं मतलूब, सब चीज़ें सिर्फ ज़राए हैं, सोर्सेस हैं। इंसान को ज़िंदा रहने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, घर चाहिए, काम कारोबार से चाहिए, ये सिर्फ सस्टेनेंस के लिए कुछ सोर्सेस हैं आपकी। लेकिन ये नहीं है कि इनके लिए ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी का मकसद नहीं है, ठीक है। चाहे वो दुकान है, कोई कोई स्किल है, कोई करियर है, कोई रिश्तेदार है, औलाद है, ये मकसद नहीं है, ये नहीं है इंसान की मतलूब वांट। इंसान की वांट अल्लाह है, ये अल्लाह मुझे मिल जाए। जिसको ये बात नहीं समझ आई वो फिर अल्लाह को छोड़ के फिर डिफरेंट चीजों के पीछे भागता है, उधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, कोई दौलत का देवी का पुजारी बन जाता है, कोई कुछ कोई अपने नफ्स को ही माबूद फिर बना लेता है। हालांकि यहाँ पे देखें, तालिब जो वांटर है और जो वांटेड है चीज, दोनों ही कमजोर हैं, बिल्कुल बूढ़े हैं। तो यहाँ पे तालिब से दूसरा एक और माना भी हो सकता है। एक तो तालिब मैंने आपको बताया था ना, चाहने वाला कौन है, जो पुजारी है, और मतलूब जिसको चाहा जा रहा है। जैसे हम कहते हैं हम आपकी जैसे हम आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहते हैं, ऐसे कहते हैं मतलूब, हमें मतलूबा रकम मिल गई, यानी जो तलब की जाती है, जिसको चाहा जाता है, जो वांटेड है। तो एक तो ये हो गया कि तालिब पुजारी है और मतलूब बुत है। तो जो पुजारी है वो भी वीक है, और जो उस जिससे वो कुछ मांग रहा है वो तो उससे भी ज़्यादा वीक है, जो मांगने वाला है उससे भी ज़्यादा वो वीक है। वो उसके ऊपर से मक्खियाँ उड़ाने का भी काम यही पुजारी करे, उसके उस सफाई करना भी उस पुजारी का ही काम है, उसको ठीक ठाक रखना भी इस मेंटेनेंस भी उसकी इस पुजारी का काम है, उसको बनाना कहीं से टूट जाए तो फिर उसको फिक्स करना भी इस पुजारी का काम है। तो कितना बेवकूफ़ है कि जो जब वो उस इतने वीक के सामने जाके अपना सर झुका रहा है, तो तुम तो सवाल ही हो, तुम्हारे सवाल को वो कैसे पूरा करेगा जो खुद तुम्हारा मोहताज है, वो भी मोहताज तो ये भी मोहताज, वो भी कमज़ोर ये भी कमज़ोर, समझ आ गई बात। ये दूसरा माना ये भी हो सकता है कि तालिब कौन है, ये बुत, ये झूठे माबूद, और मतलूब क्या है, वो जो मक्खी लेके उड़ गई, वो उसके पीछे भाग रहा है ना कि मुझे मिल जाए, मैं इसको से छुड़ा लूँ। तो वो दोनों ही कमज़ोर हैं, वो भी और वो चीज़ जो उसको जो वांटेड है, वो खाना जो चीज़ वो उठा के ले गई, वो भी वांटेड है, वो भी कमज़ोर, और ये भी कमज़ोर है जो चाह रहा है कि मुझे मिल जाए। तो इंसान सोच ले कि जितनी चीज़ों को, चाहे कोई बुतों को पूजता है या कोई और अल्लाह के सिवा किसी को भी पूज रहा है, वो सब चीज़ें इसी तरह वीक है, सब वीक है, कोई भी इस काबिल नहीं है कि वो इंसान के लिए कुछ भी कर सके, कुछ उसको दे सके। कोई अगर चाहता है किसी की, मसलन किसी ने अगर अपना मतलूब अपना अपनी सस्टेनेंस या वो नहीं समझी इसको, अपना मतलूब समझा अपने घर को, अपनी नौकरी को, अपनी करियर को, अपनी इन चीज़ों को। तो याद रखें, हम खुद तो वीक हैं, वो चीज़ें भी सब वीक हैं, वो हमारा कुछ काम नहीं कर सकती, कुछ हमें नहीं बना सकती, कुछ हमें नहीं दे सकती, ठीक है। कभी कभी हम अपनी ख्वाहिशात को अपना मतलूब बना लेते हैं ना, अपना खुदा बना लेते हैं कि वो ही है मतलूब। यहाँ पे तो एक एक पुजारी और एक बुत है ना, तो कभी इंसान के बुत वो पत्थर के बुत नहीं होते, बल्कि कोई और चीज़ें हैं जो उसके बुत हैं, जो उसने दिलों में सजा रखे हैं। और वो बुत ये इनमें से कोई चीज़ भी हो सकती है। आजकल मटीरियलिज्म भी एक बुत है जिसकी लोग पूजा करते हैं, जिसके पास है वो बस वो उसी को समझते हैं यही हर चीज़ है, बस ये मुझे मिल जाए तो वरना मैं खत्म हूँ, और ये मिल जाएगा तो सब कुछ है, ये नहीं मिला तो कुछ नहीं। अल्लाहु अकबर। हालांकि मतलूब सिर्फ अल्लाह की ज़ात होनी चाहिए, सिर्फ अल्लाह की ज़ात, क्योंकि ये सारे मतलूब जो हैं ये वीक हैं, ये वीक हैं, और इंसान इनके पीछे दौड़ते 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 सारी ज़िंदगी लगा देता है। और अगर नहीं मिले तब डिप्रेशन, डिप्रेशन में हाय मुझे नहीं, अगर हाथ से चले जाएं तब मसले, और अगर मिल भी जाएं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं कर सकते। हाँ वो ये ना, कभी कोई ख्वाहिशात को अपना मतलूब बना लेते, मेरी ये ख्वाहिश है बस, वो ख्वाहिशात के पीछे भाग भाग के, फिर एक ख्वाहिश थोड़ी होती है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकली, फिर वो ख्वाहिशात के पीछे भागता रहता है। ख्वाहिशात ही उसकी खुदा हैं, वो खुदा बन जाती हैं। और ये चाहने वाला जो तालिब है ये भी वीक है, और वो जो ख्वाहिशात हैं वो भी उसको क्या देंगी, समझ आ गई बात। ये बहुत स्ट्रॉन्ग आयत है इस लिहाज से कि थ्री सिर्फ वर्डिंग्स हैं, लेकिन तौहीद ना इसके अंदर ही समझ आ जाती है, तौहीद को एक्सप्लेन कर देते हैं ये थ्री वर्ड्स। दावत तालिबु वल मतलूब। अगर हम आज ये सोचें कि वो तो बुतों को करते थे, वो कितनी हंसी की बात है, देखो उनके बुत कितने वीक थे, और वो उनके, हाँ 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 ठीक है, हम इसके ऊपर तो हंस सकते हैं, लेकिन ये भी देख लें कि फिर हमने क्या क्या बुत बनाए हुए, कहीं ये तो नहीं कि हम अपनी सारी जिंदगी उन बुतों के पीछे भाग रहे हैं, उनके पीछे भाग भाग के, वही हमारा खुदा है नऊज़ुबिल्लाह, और उन्हीं को उन्हीं ये पूजा करते हैं दिन रात, वही जहन में है, मकसद हमारी ज़िंदगी का बस वही है कि वो उनको पा लें, तो फिर देख लें कि वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, चाहे वो पैसा है, चाहे वो कोई जॉब है, चाहे वो कोई चीज़ भी है। तुम जब मखलूक को तलब करोगे ना, याद रखो, तो तुम खुद भी कमज़ोर हो जाओगे, और जो अल्लाह को तलब करता है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि जिसको तलब कर रहे हो आप वो स्ट्रॉन्ग है। और चूंकि ये मैंने जैसे आपको बताया ना कि जिसका आइडियल होता है या वो होता है, जो अगर घटिया चीज़ को आपने मतलूब किया कि यही खुदा है मेरा, तो फिर खुद भी घटिया हो गए, फिर खुद भी उस लेवल पे नीचे आ गए के। तो इसलिए इस चीज़ को समझना चाहिए कि मतलूब बनाना है तो अल्लाह को बताओ, क्योंकि वो कमज़ोर नहीं है, ठीक है। आई होप कि मैंने ये बात सही से समझा दी हो, कि थोड़ी सी ज़रा समझने वाली ये बात है। मा कदरुल्लाह हक कदर ही, असल में बात ये है कि इन्होंने अल्लाह की कदर ही नहीं जानी जैसे कदर जानने का हक था। सुभान अल्लाह, ये आयत ना बहुत मुझे पसंद भी है, और जैसे कि इंसान को गिरा देती है, तुमने अल्लाह का गिला है, तुमने उस रब की कदर नहीं पहचानी जैसे कदर करने का हक था, अंडर एस्टिमेट किया उसको, अंडर एस्टिमेट, तुमने उसकी वर्थ उसकी वैल्यू ही नहीं जानी जैसा वो रब की तुम्हें जाननी चाहिए थी ना, वैसे नहीं तुमने जानी। सबसे पहले तो जो पिछली आयत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये कि तुमने किस किस को मतलूब बना लिया, उन्होंने तो मतलूब बुतों को बनाया था, और हमने मतलूब क्या बनाया हुआ, सोचिए अपनी ज़िंदगी में आपका मतलूब क्या है, वॉट इज़ योर गोल इन लाइफ, वॉट डू यू रन आफ्टर, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका जीने का मकसद क्या है, क्या है जीने का मकसद आपका, कोई तो होगा ना, यहाँ ऐसे ही बेमकसद ही जी रहे, वो भी फिर बेकार ही है, क्योंकि जो
वो इतना आला रब है, और रब्बुल आलमीन उसको छोड़ के ये खिलौने जैसी चीजों को तुमने अपने मतलूब बना लिए। वो है तुम्हारे बुत, तुम पत्थर के बुतों पे हंसते हो तो तुमने देखो क्या बुत बनाए। में तुमने अल्लाह की कदर ही नहीं पहचानी। हाय तुम पहचान लेते ना अगर अपने रब को तो फिर ही कदर करते ना। अब तुम्हें कदर इसलिए नहीं कि तुम्हें पहचान नहीं है। अब जैसे मिसाल के तौर पे हम तो खैर सदर वगैरह और इनको टीवियों पे देख लेते हैं तो हमें उनकी पहचान होती है, लेकिन जैसे उस ज़माने में खलीफतुल मुस्लिमीन होते थे, वो खलीफा होते थे तो लोगों को, वो लोगों में जाते थे, लोगों को पता ही नहीं चलता था कि ये खलीफा। जब उनको पता चलता था वो एकदम डर, अच्छा ये खलीफा, हम तो इनसे पहले ये शिकायतें कर रहे थे, ये बातें कर। तो जब याद रखिए किसी की कदर आप उस वक्त पहचानते जब उसकी पहचान होती। जैसे वो एक भी मिसाल मैं आपके सामने रखती हूँ कि हदीस में आता है ना, एक औरत कब्र पे बैठी हुई रो रही थी तो बड़े उसको दुख था, उसका कोई फौत हो गया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब से गुजरे, आपने फरमाया तुम सब्र करो। उसने कहा आप मुझे सब्र का क्या कह रहे हैं, आपको क्या पता मेरे पर क्या गुजरी है ये वो। तो बाद में सहाबा कराम ने उसको बताया तुम्हें पता है ये अल्लाह के रसूल थे, तो फिर उसको बड़ा वो मतलब रियलाइज़ हुआ, वो फ़ौरन आई और उसने यानी ये माजरत की कि मैंने इस तरह की बात करी, मुझे पता नहीं था। तो देखिए इसी तरह आप कहीं जाएं, आप किसी से ऐसे ही बात कर रहे हो, उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, उसके बाद आपको पता चलता है ओ ये तो फ़लाँ आलम दीन है, ये तो फ़लाँ इतनी बड़ी वो शख्सियत है, तो क्या आपका फिर रवैया वही रहता है जैसे आप पहले रिलैक्स होकर बातें कर रहे थे? नहीं रहता ना। पहले आपको पता नहीं था इसलिए आप रिलैक्स थे, उल्टी सीधी इधर की उधर हांक रहे हैं। जूं ही आपको पता चला कि ये तो फलां बंदा है, प्रेसिडेंट है, या ये आलिम दीन है, ये तो फलां शेख हैं, ये तो फलां, फौरन आप एकदम जरा संभल जाते हैं और आप अपने आपको भी ठीक ठाक करते हैं, अपनी बातें भी सही करते हैं कि नहीं भाई आप पता ये तो वो है। तो फर्क क्या हुआ? बंदा तो वही था, पहले भी वही था और बाद में भी वही है, क्या फर्क था? फ़र्क ये है कि आपको पहले पहचान नहीं थी, बाद में जब आपको पहचान हो गई कि ये तो वो है तो फिर आपका रवैया ही बदल गया, आपकी बातचीत ही बदल गई, आपकी सारा जो पर्सपेक्टिव था वही चेंज हो गया। ऐसा ही है ना, जब इंसान को अल्लाह ताला का इल्म नहीं होता, उसकी मार्फत नहीं होती, उसकी पहचान नहीं होती ना, वो अल्लाह को जानता नहीं है ना, तो फिर वो उल्टी सीधी भी बातें करता है, वो बस इतराज़ात भी करता है, वो गिले शिकवे शिकायतें भी करता है, वो अल्लाह ताला के अहकामात को भी नहीं कुछ समझता, वो बस जो मुंह में आता है वो बोलता रहता है। लेकिन जूं जूं उसको अल्लाह की पहचान होती रहती है वो कहता है मैं अपना सर उठाऊं तो कैसे उठाऊं। फिर वो कहता है माँ कदरुल्लाह का कदरी, अल्लाह हमने तो तेरी कदर पहचानी नहीं जैसे तेरी कदर करने का हक था। तू वो रब कहाँ, तू और कहाँ हम, हमारी क्या मिजाल के हम कुछ बोले, हमारी क्या मिजाल के हम अपना सर उठाए। तू जिसको पहचान होगी ना, इसीलिए आपको कुरान की तरफ बुलाया जाता है, आओ अपने रब को पहचानो। कहाँ से पहचानोगे, यहाँ तो कायनात के अंदर गौर व फिक्र करो, वो तो करना आता ही नहीं हमें जब तक हम कुरान नहीं पढ़ लेते। कुरान पढ़ते ही हैं तो फिर ही अभी हमें थोड़ी बहुत हमारी सोच इस तरफ आई है कि अच्छा हमें गौर व फिक्र भी करना चाहिए। इससे पहले तो हमें गौर व फिक्र भी नहीं पता था कि वो क्या चीज़ होती है। तो अल्लाह की किताब सिखाती है, वो बताती है रब की पहचान, और जैसे जैसे पहचान होती जाती है इंसान का दिल भी झुकता जाता है, उसका सर भी झुकता जाता है, और वो सोच नहीं सकता कि वो अल्लाह के सामने कोई बात करे, वो सोच नहीं सकता कि वो कोई उसके ऊपर एतराज़ करे। वो बढ़ बढ़ के बातें करने वाला नहीं होता फिर, वो जो मुँह में आए बोलने वाला नहीं होता फिर, वो समझ जाता है, संभल जाता है, उसकी ज़िंदगी संभल जाती, उसकी सोच ही बदल जाती है। वो कहता है ओ रब्बुल आलमीन मैं क्या चीज़ हूँ। उसको अपनी औकात नज़र आ जाती है कि कहाँ वो रब और कहाँ मैं। तब आती है कदर, जैसे पहचान बढ़ती जाएगी उसी तरह कदर भी बढ़ती जाएगी, याद रखें। फिर रब जो मर्जी करे, फिर इंसान कहता है अल्लाह फिर इंसान कहता है कि अल्लाह अगर तू जहन्नुम में भी डाल देगा तो तू हक है, اللہ وہ تیرا انصاف ہی ہوگا اور تو جنت میں بھیجتا ہے وہ تیری رحمت ہوگی. اللہ ہم نہیں اس قابل ہے. اللہ ہم تو ساری زندگی بھی جھکے رہے تو ہم تیرا حق نہیں ادا کر سکتے. جب پہچان نہیں ہوتی تو پھر انسان انسانوں سے زیادہ ڈرتا ہے اور اللہ سے نہیں ڈرتا. پھر انسان انسانوں کو راضی کرنے کی زیادہ کوشش کرتا ہے, اللہ کو نہیں راضی کرتا. پھر انسان انسانوں کی خوشی زیادہ دیکھتا ہے, اللہ کی رضا نہیں دیکھتا. یہ فرق ہے. اور جب قدر آ جاتی ہے نا, یعنی پہچان آ جاتی ہے, تو پھر قدر کیا ہے کہ اللہ تو ہی میرا مطلوب, تو ہی میرا مقصود. اللہ گول ان لائف, میرا مقصد حیات ہی یہی کہ اللہ تو راضی ہو جائے. پھر یہ آتا ہے کہ پھر اللہ سب کچھ بھی قربان کر دوں تو کچھ نہیں کیا میں نے. پھر یہ جذبات آتے. پھر انسان انسانوں سے نہیں ڈرتا, اللہ سے ڈرتا ہے. پھر انسان دوسروں کا منہ دیکھ دیکھ کے, اپنے جیسوں کا منہ دیکھ دیکھ کے نہیں چلتا, وہ دیکھتا میرا رب کس پہ راضی ہوتا ہے. پھر انسان یہ نہیں کرتا کہ تنہائی میں تو جو مرضی کرے, لوگوں کے سامنے ڈر رہا ہے کرتے ہوئے کوئی بات, اور تنہائیوں میں اس کو اللہ کا خوف ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو پہچان گیا ہے. پھر اس کے یہ قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا, پھر ریاکاریاں نہیں آیا کرتی, کیونکہ اس کو پتا ہے وہ بڑا راضی ہو گیا. یہ کیا چیزیں ہیں, ان کو راضی کرنا ہے میں نے. تو قدر پہچانو. اللہ کا گلا ہے تم سے, اللہ کا شکوا ہے, انہوں نے میری قدر ہی نہیں جانی. وہ رب جو رؤوف اور رحیم ہے تم نے اس کی قدر نہیں جانی. وہ جو ودود ہے اس کا نام ہی محبت کرنے والا ہے, اس کی نہیں قدر پہچانی. کہ اس کو چھوڑ چھوڑ کے جاتے ہو دوسروں کے دروں کے اوپر, وہاں پہ اپنے ماتھے ٹیکتے ہو, کبھی کدھر جا کے چادریں چڑھاتے ہو انہوں نے میرے کام کرنے, کبھی کدھر جا کے دھاگے باندھتے ہو کہ انہیں سے منتیں مانگوں گا تو اولادیں ملیں گی, فلانے کو راضی کر لوں گا تو نوکریاں ملیں گی, فلانا رزق دینے والا ہے, فلانا اولاد دینے والا ہے, فلانا بیماریوں سے شفا دینے والا ہے, فلانا ہمارے مسئلے حل کرنے والا ہے, وہ مشکل کشا ہے, وہ سہارا ہے. پھر یہ نہیں کہو گے, پھر وہ غوث اعظم ہے اور وہ یہ ہے, یہ نہیں کہو گے. پھر ایک اللہ ہے, وہ اللہ تیرے سے بڑی تو کوئی طاقت نہیں, سب سے بڑی طاقت تو ہے, تو میں اپنا ماتھا تیرے آگے ٹیکتا ہوں. یہ اللہ کی قدر پہچاننا. اور جب تم اللہ کے مقابلے میں ان کو لے آتے ہو, چاہے بت ہے چاہے کوئی بھی چیز ہے جس کو مطلوب بنایا, تم نے تو انڈر ایسٹیمیٹ کیا, تم نے جانا ہی نہیں کہاں کہ اس ذات کے ساتھ اس کو شریک کر رہے ہو گھٹیا چیزوں کو. ان اللہ قوی عزیز, بے شک اللہ تعالیٰ تو قوت والا ہے, زبردست ہے. اللہ اکبر, کے اس کے سامنے تو نور کے اتنے پردے ہیں کہ اگر وہ پردے ہٹ جائیں تو اس کے چہرے کی تجلیاں ان تمام چیزوں کو جلا دیں. جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے وہ رب ہے, وہ رب ہے کہ جس کا تخت, جس کا عرش, جس کی کرسی, کرسی اس کی ایسے ہے کہ صحراؤں کے اندر جیسے صحرا ہو, اس کے اندر ایک چھلا رکھ دیا جائے, اتنا سا ایک رنگ رکھ دیا جائے, اس طرح آسمان اور زمین اس کے سامنے. وہ رب کتنا عظیم, اتنا بڑا رب. ہم جس جن چیزوں سے ڈرتے ہیں, جن چیزوں کو بڑا سمجھتے ہیں, آپ سوچیں جن لوگوں نے نیاگرا فال دیکھی ہوئی ہے, وہ آپ دیکھیں اس کو دیکھتے ہیں انسان ہیبت زدہ رہ جاتا ہے. اس کے اوپر نا ایک دل پہ ایک روب ستاری ہو جاتا ہے, ہیبت آتی ہے. جو اس کا رب ہوگا وہ کتنا بڑا ہے. جب آپ یہ اتنے اتنے دیکھتے ہیں یہ سٹارز اور اتنی گیلیکسیز, اور وہ ان کا بتاتے ہیں وہ کتنے لائٹ ایئرز دور ہیں, اتنے اتنے لائٹ ایئر دور, ہزاروں لاکھوں, پھر کتنی کتنی گیلیکسیز ہیں, ہیبت آتی ہے. اتنی بڑی کائنات, اتنی بڑی کائنات. وہ کہتے ہیں تو آپ کی تو زمین کچھ ہے ہی نہیں ہے, وہ تو کوئی نظر بھی نہ آئے, اتنے ذرے کے برابر ایک طرف پڑی. پھر آپ کہتے ہیں اس تمام کا مالک کتنا بڑا ہوگا. نہیں, اس کے اوپر تو جتنی بھی بات کرتے ہیں ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہو جائے گا, ہم آگے چلتے ہیں. اللہ اکبر, پورا ایک میرے خیال لیکچر ہونا چاہیے اس کے اوپر. तो बस बात यह है कि लोगों ने अल्लाह को क्या समझ रखा है, क्या समझते हो तुम अल्लाह को कि तुम इन चीज़ों को अल्लाह के मुकाबले में लेकर आते हो।